وزدنا علما
وزدنا علما
नफा दे हमें बीमा साथ इसके जो अल्लमतना तूने सिखाया हमें या तूने इल्म दिया हमें वअल्लिमना और हमें वो इल्म अता कर मा यनफाउना जो हमें नफा दे वजीदना इल्मा और हमारे इल्म में इजाफा फरमा। अल्हम्दुलिल्लाह ऊपर वाली दुआ से मफहूम मिलता जुलता है कि हम किस चीज का इल्म मांगते
जो फायदा
है। पहले हमने कौन सी चीज से पनाह मांगी वो इल्म से जो फायदा ना दे और यहाँ हमने क्या मांगा अल्हम्दुलिल्लाह। अगर हमने ये छोटी छोटी दुआ अपने खुद भी सीख ली अपने मामूल में कर ली बच्चों को सिखा दी तो उनको अपने स्कूल कॉलेज लाइफ में कितना फायदा होगा ना है। अल्हम्दुलिल्लाह और जब समझ के पढ़ेंगे तो वाकई में और आसानी होगी। लास्ट दुआ है अल्लाहुम्मा अरिनल हक
इधर उनको दे दें उनको कोई कप दे के ना उनसे ले اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ بنعمتہ تتم الصالحات، لا حول ولا قوۃ الا باللہ، وما توفیق کی الا باللہ. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یہ جو آج سفر شروع ہو رہا ہے، یہ ہماری زندگی میں ایک بہت بڑی چینج لے کر آئے. ایکسائٹیڈ ہے، پوچھنے والی بات ہی نہیں ہے، ایسے ہی ہے نا. کچھ اندازہ ہے کہ ہم کیا کریں گے اس کورس میں؟ کچھ اندازہ ہو گیا؟ ہینڈ آؤٹس مجھے بھی دے دیجیے گا جن کو دیے ہیں. بیسیکلی یہ کورس آپ لوگ کروائیں گے. آپ سوچ رہے ہیں نا کہ یہ کورس ایڈمنز اور میں مل کے آپ کے لیے کریں گے، لیکن حقیقت میں ہر کلاس بھی عموماً، لیکن خاص طور پہ یہ جو کورس ہے نا، یہ آپ سب کی پارٹیسپیشن سے پورا ہوگا. ابھی جو ہم کر رہے ہیں نا، یہ اس کورس کا ون پہ دوسرا والا دینا، جو ابھی جو کورس ہے نا، یہ اس کا ہاف ہے. جب یہ کورس پورا ہو جائے گا نا اور پائل اپ ہوگا، تو اس میں آدھے سے زیادہ انپٹ آپ کا ہوگا. ابھی آپ کا حصہ کیسے ڈلے گا؟ توجہ سے سنیں گے، رولز اینڈ ریگولیشنز کو فالو کریں گے اور ماننے کی عادت ڈالیں گے، ایسے ہی ہے نا. پھر بعد میں آپ لوگوں کا حصہ اس میں کیسے ڈلے گا؟ یہاں جو جو لفظ بولا جا رہا ہے نا، یہ سب آپ نے نوٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے. آج تو ایک انٹروڈکٹری کلاس ہے، آج تو لیٹ اٹ ریلیکسڈ. کل سے جو ہمارا یہاں سفر شروع ہوگا، وہ بہت انٹینسو ہوگا، اور اس کے لیے آپ کو اپنے ہاتھ گرم کر کے آنے پڑیں گے، لکھنے کی عادت ڈالنی پڑے گی. کچھ چیزیں یہاں بیٹھ کر نوٹ کر لیں گے، اور کچھ چیزیں بعد میں جا کر دوبارہ بھی سن کے نوٹ کرنی پڑ سکتی ہیں. لیکن ایٹ دا اینڈ جو آپ کو ملے گا نا، بس وہ ابھی آپ نہ پوچھیں خود سے. آج کا جو بہت بڑا مسئلہ ہے وہ یہی ہے کہ ہم اچھے مسلمان بننا چاہتے ہیں، لیکن ریئل میں ایک اچھا مسلم کون ہوتا ہے یہ ہمیں نہیں پتہ چلتا. ہم دنیا کو نفع دینا چاہتے ہیں، لیکن کیسے یہ سفر شروع کریں، کہاں سے شروع کریں، سمجھ نہیں آتا. یعنی آپ کہہ لیجئے کہ دین اسلام کی ایک ملی جلی مخلوط، ایک مکسڈ اپ فارم اس وقت ہمارے سامنے ہے. از اٹ ٹرو؟ جس کو دین کا جو حصہ سمجھ آیا، اس نے اس کو اپنے عمل میں ڈھال لیا. کسی کی توجہ زیادہ تبلیغ پہ گئی، تو انہوں نے تبلیغ کو فوکس کیا. کسی کو جہاد لفظ بہت اچھا لگا، اور مجھے نہیں دیکھے لکھیں، یہ آپ کا دیکھنے کا نہیں، لکھنے اور سننے کا سفر ہے. اور یہ میں نے خاص طور پہ آپ کو پیار سے کہا ہے، جو اسٹوڈنٹس ہیں سبیل الجنہ کے. دیکھنا تو بڑا اچھا لگتا ہے، سننا بعد میں میں پوچھوں گی تو آپ کہیں گے وہ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. اب بات شروع ہو گئی، انشاءاللہ ابھی میں آیتیں بھی پڑھتی ہوں، لیکن یہ ایک ایک لفظ قیمتی ہے. میں تو یہ سوچ رہی تھی رات کو بھی کہ جو ٹائم ہم نے چوز کیا، اور جو کچھ انشاءاللہ ہم نے اس پورے کورس میں گریب کرنا ہے، بیلیو می ود آؤٹ اینی ایگزیجریشن، مبالغے کے بغیر، یہ دریا کو کوزے میں بند کرنا ہے. کوزہ کیا ہوتا ہے؟ کپ، پیار مٹی کے پیالے ہوتے تھے نا، شاید آپ کے گھروں میں کسی کے رکھا ہو پہلے سے، کسی کا نانی دادی کے وقت کا، آپ کے گھر میں ہے نا. کبھی سوچئے کوئی ایک دریا، چلے دریائے راوی ہی سوچ لے اگر پاکستان سے ہیں، انڈیا میں ہوگا گنگا جمنا. دریا کو کے پورے پانی کو آپ ایک پیالے میں بند کر سکتے ہیں؟ مشکل ہے. تو یہ محاورہ اس وقت بولا جاتا ہے جب ایک بہت بڑی چیز کو جامع اور کمپریہنسو وے میں کسی بہت چھوٹی سی جگہ پہ مقید کیا جائے. اور میں یہ اس بات کو ریکارڈنگ میں بھی رکھنا چاہوں گی کہ یہ کورس ہم اس وقت جو الحمدللہ آن سائٹ اٹلانٹا میں کر رہے ہیں، 26 نومبر 2018 ہے آج، اسی ہال میں 14 نومبر 2018 تک اللہ کے حکم سے سبیل الجنہ کلاس ہوتی رہی. 15 کا دن اس لیے یہاں نہیں بولا کہ وہ کہیں اور تکمیل ہوئی. ان در و دیوار نے آپ سب کے دلوں کو تیار کیا اس کورس کو کرنے کے لیے. یعنی یہ کورس جو میں اس وقت آفر کر رہی ہوں اللہ کے حکم سے اپنے پیارے ساتھیوں کی مدد سے، یہ ان لوگوں کو بہت فائدہ دے گا. نمبر ایک، جو پورا قرآن پاک پڑھ چکے ہیں، کہیں سے بھی پڑھ چکے ہیں. کبھی بھی نہیں میں نے کہا کہ جنہوں نے ہمارے پلیٹ فارم یا ہمارے اسکول سے پڑھا ہے وہی اچھا پڑھ رہے ہیں، غلط بات ہے. جس کو قرآن کی روح سمجھ آ گئی، قرآن سنت کے مطابق ہے، اسٹائل طریقے کچھ بھی ہوتے ہیں، یہ کورس اس کے لیے. یعنی یہ کورس فیوچر میں کون لوگ کریں گے؟ نمبر ایک، جو کسی بھی انسٹیٹیوٹ سے پورے قرآن کی تفسیر کورس، اور پورے قرآن کا تفسیر کورس جس میں ضروری چیزیں ہوتی ہیں وہ کر چکے ہیں، اور اب ان کو آگے مزید پڑھنا ہے، और इवन बहुत सारे और कोर्सेज भी कर चुके हैं, लेकिन याद रखिएगा कि दावत देना या एज अ टीचर किसी से बात करना ये छोटी जिम्मेदारी नहीं है। बस दफ़ा हमारी एक गलत छोटी सी बात किसी को पूरे दीन से दूर कर देती है। बहुत सारे लोग मैं इर्द गिर्द देखती हूँ जब मैं दुनिया में घूमती हूँ कि कुरान के कोर्सेज कर करके घरों में बैठे हैं। इवन उसमें मैं अपने साथियों को भी कह सकती हूँ, हेड काउंट मकसद नहीं है, लेकिन ऐसे ही लिस्टों के मुताबिक इन्होंने, हम एक जगह कुछ बातें कर रहे थे तो यानी पिछले तकरीबन 10 से 15 साल में नूरुल कुरान के तहत ऑनलाइन सिर्फ स्टूडेंट्स की तादाद देखी जाए तो वो हंड्रेड्स में नहीं है, थाउजेंड्स में। वो सब किधर हैं इस वक्त? क्वेश्चन लिखिए खुद से। इतने लोग हर साल मस्जिदों, मदरसों, जामियात और इसके अलावा ऑफ कोर्स हमारे जैसे ऑनलाइन ऑन साइट इंस्टीट्यूट्स में से निकलते हैं। हमारा इंस्टीट्यूट तो बहुत छोटा सा है, ये तो अभी बेबी स्टेप्स पे है। हमसे बहुत बड़े अच्छे इदारे भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जो हमसे ज़्यादा तक अरसे से ये खिदमत अंजाम दे रहे हैं, अल्लाह ताला उनकी ये कबूल करे। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि हर साल इतने लोगों के कुरान पाक पढ़ने के बाद और कोर्सेज जो कुरान की तालीम और सुन्नत और हदीस और फ़िक्र और इसी तरह आलिमात और जो भी कोर्सेज के नाम है हमारे कल्चर में मारूफ, वो सब लोग किधर हैं? दिस इज़ माई क्वेश्चन, आई वॉन्ट टू फाइंड देम। आप अगर ज्यूज़ की हिस्ट्री पढ़े ना तो उनकी हिस्ट्री में एक बहुत मारूफ टर्म है, लॉस्ट ट्राइब्स। थोड़ी सी याद है कोई बात सबीलुल जन्ना में उनके बारे में सुनी हो? मैंने पढ़ाई थी, आपने उस वक्त ना गौर से सुनी हो तो और बात है। यहूद आज भी अपने उस गुमशुदा कबीले को ढूंढ रहे हैं जिसको आज वो लॉस्ट ट्राइब कहते हैं। उनको छोड़ दीजिए, मेरा एक क्वेश्चन है खुद से भी, और याद रखिए कि ये बात ही एक लफ्ज़ जो बोल रही हूँ ना इस वक्त, ये दर्द और एहसासमंदी के साथ बोल रही हूँ, इस उम्मत की बका और इस उम्मत के उगर भरने को सोच रही हूँ, और सारे नामों फिरकों और मसालिक से ऊपर उठकर ये बात कह रही हूँ कि हम मुसलमान जो दुनिया में 2 बिलियन से भी इस वक्त ज़ायद हैं, लेकिन हमारा हाल कुछ इस किस्म का लगता है कि एक यूनिवर्सिटी हो। आप इमेजिन कीजिए कि ये जगह जो माशाल्लाह आपके लिए अल्लाह ने चूज़ की हुई है, ये नूरुल कुरान कुरान इंस्टीट्यूट ना होता, ये एक मेडिकल कॉलेज होता, पॉसिबल है ना? और इधर आपने तकरीबन 300 डेज में एक मेडिकल का कोर्स किया होता। व्हाट पीपल विल एक्सपेक्ट फ्रॉम अस? ये अटलांटा कम्युनिटी, जॉर्जिया, रॉजवेल, क्या आप सब ये सारे डॉक्टर बनने के बाद अब घर में बैठे रहते? आपको पता है एक बात जो एक साइड इशू है बट इट्स ट्रू, कि आज लोग कहते हैं कि जी जॉब्स नहीं मिलती हमारे मुल्क पाकिस्तान में, ख़ास तौर पे एक बहुत बड़ा परसेप्शन है, एक सोच दी गई है कि बेचारे एमए करके भी सड़कों पे रुल रहे हैं और दिस एंड दैट। हालांकि मैं जो जुमला बोलने लगी हूँ ना, ये शायद आपने ना कभी सुना हो, हर अच्छे स्टूडेंट को उसकी स्टूडेंट लाइफ के दौरान ही जॉब ऑफर हो जाती है। उस्तादों को पता होता है, इदारों को पता होता है, आपके रिजल्ट्स और फिगर फैक्ट्स को देखकर अच्छी कंपनीज पहले से आपको नज़रों में रखे होते हैं कि ये हमारे काम के, और आप अक्सर देखिए जो अब हाई लेवल पे पहुंचते हैं वो साथ ही उसी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में पार्ट टाइम जॉब भी शुरू कर चुके होते हैं ना अपने प्रोफेशन से मुतल्लिक। तो क्या पता चला आज दुनिया का जो निज़ाम है इसको अगर देखें तो हम क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि हमने बाद में सर्व करना है। सर्व करने और पढ़ने के बीच में ये कोर्स है जो आज आप शुरू कर रहे हैं, ये इसकी पहली कड़ी है। और ये भी याद रखिए कि ये एक जीना है आपके अगले एडवांस कोर्स नूरुल्लाह नूर का। आप में से जो स्टूडेंट्स कुरान पढ़ने के बाद अब ये कोर्स करेंगे इंशाल्लाह, बड़ा लिमिटेड टाइम है, बहुत लिमिटेड आवर्स हैं, बहुत कुछ करने को, लेकिन वक्त के हिसाब से जो आपके नसीब में होगा आप ले लेंगे और घबराएंगे नहीं। क्यों? कि इसके बाद फिर आपने एक और स्टेप लेना है। आज हम यही पढ़ेंगे, यानी मेरा दिल क्या कर रहा है कि इस कोर्स के तहत आपको नंबर एक इस पूरे कोर्स में, जिसका नाम एम्बेसडर्स ऑफ इस्लाम है, मैं ये चंद तारुफी बातें बता दूं ताकि जो भी लोग हमारे साथ इस कोर्स को बाद में करते कराते हैं वो इंशाल्लाह ताला इससे बाद में फ़ायदा होंगे। जी, अब आप देखिए कि जो लोग ये कोर्स करना चाहते हैं, लव्स एम्बेसडर्स ऑफ इस्लाम, आप सब ने मेरा हेल कई बार ये फ्लायर देखा होगा, शेयर किए दूसरों से, क्या आपने ये तो नहीं कह दिया कि ये कोर्स सिर्फ हमारे ही लिए है और हमें नीचे ना बैठना पड़े? ये आज आप ऊपर बैठे हैं, कल आप लोगों ने भी नीचे बैठना है, ये इस कोर्स की एक रिक्वायरमेंट है इंशाल्लाह। हमने दिल भी खुले करने हैं और बड़े करने हैं। तो बहरहाल ये देखिए कि बेसिकली एम्बेसडर्स ऑफ इस्लाम में दो चीज़ें हैं, नंबर एक इस्लाम और नंबर दो एम्बेसडर्स। ठीक है, इस्लाम क्या है ये पढ़ेंगे, क्योंकि जब तक आपको पता ही नहीं कि इस्लाम क्या, व्हाट इज़ इस्लाम, इस्लाम क्या है ये पढ़ेंगे तरतीब के साथ और तदरीज के साथ, यानी कंटिन्यूसली कहाँ से शुरू होता है कहाँ पहुँचता है। अभी इससे बाद जो मेरा नेक्स्ट लेक्चर आपके साथ होगा, इंशाल्लाह आपको फील करा देगा कि हमने इस पूरे कोर्स में क्या लेना है। ठीक है, तो हम इस्लाम सीखेंगे, आप कहेंगे कुरान तो पढ़ चुके, साथ ही यहाँ मैं ज़रा दूसरे ग्रुप को भी अपने इस सारे हिस्से में शामिल कर लूँ, जो शुरू में बात की कि दो लोगों के लिए ये कोर्स है, जो किसी भी जगह से अल्हम्दुलिल्लाह कुरान सीख चुके हैं, इवन अब सिखा रहे हैं, उनके लिए तो फ़र्ज़ है, वरना बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, एक गलती छोटी सी बंदे को कहाँ हटाती है। दूसरा, ये कोर्स एम्बेसडर्स ऑफ इस्लाम उन लोगों के लिए भी है जिनको अपने बिजी स्केड्यूल्स, मसरूफ़ ज़िंदगी, या हालात के कुछ ताने बाने, या सेहत के प्रॉब्लम्स, छोटे बच्चों की माएँ होने की वजह से, या बहुत बड़ी उम्र का होने की वजह से अभी तक पूरा कुरान या दीन का एक इन डेप्थ नॉलेज हासिल करने का मौका नहीं मिला। अगर आप मुझे इजाज़त देना तो मैं ये कह सकती हूँ कि इट्स अ मिनी दौरे कुरान। फ़र्क क्या है, दौरे कुरान में अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन से कुल आउज़ु बि रब्बिन नास था ना, उसमें हमने कुरान की मौजूदा तरतीब रखी सामने, ऐसे ही करते हैं ना, कुरान का टेक्स्ट सामने होता है, खोलते जाते हैं, पढ़ते जाते हैं, और वो तरतीब कुरान की जो इस वक्त हमारे पास नज़र आती है कुरान की आयतों के तर्जमे की रोशनी में, हम उनको एक एक महीने में पूरा कर लेते हैं। इसमें फ़र्क है, इसमें कुरान का टेक्स्ट एज अ टेक्स्ट नहीं यूज़ करेंगे हम कुरान पूरा 114 सूरतें, हमें चाहती क्या है देना, यानी कह लें कि दिस इज़ द फ्रूट, यानी अगर मैं इस बात को रूट टू फ्रूट कहूँ, अभी जो अगला सेशन हम करने वाले हैं, रूट टू फ्रूट, जड़ से फल बनने का मरहला क्या है, तो ये कोर्स उनको भी फ़ायदा देगा। थोड़े से अरसे में, इतने शॉर्ट टाइम में, अगर आपको इस्लाम ए टू जी मिल जाए, अब वापस आ जाएं इस कोर्स के दो इंग्रेडिएंट्स मेन, नंबर एक इस्लाम और नंबर दो सफ़ीर। इस्लाम की जो फॉर्मेशन है कहाँ से शुरू होती है, और तीसरी बात यह है कि कहाँ पे एंड अप होता है, और ये कोर्स इक्वली इक्वली बेनिफिशियल है एक तीसरे ग्रुप के लिए भी, दोज हु वांट टू गिव दावा, जो अल्लाह का पैगाम आगे उसके बंदों तक पहुँचाना चाहते हैं, इवन टू मुस्लिम्स और इवन टू नॉन मुस्लिम्स। आज हम दो किस्म के लोगों के बीच में घिरे हुए हैं, एक वो जो है मुस्लिम बट इतना शगफ नहीं है, इतना क्लोजनेस नहीं है कुरान सुन्नत से, दे आर लॉस्ट। जब हम उनको दीन की दावत दें तो लड़ाई होती है, और उसमें बहुत सारे तुम्हारे करीबी होते हैं, घर वाले, नमाज का कहें तो माइंड कर जाते हैं, सिगरेट की बात करें तो बुरा मानते हैं, ज़रा औरत है तो उसको बाहर अपने आप को छुपाने की बात करें तो परेशान हो जाती हैं, इसी तरह बाज़ लोग सूद पे बात करना शुरू होते हैं, बाज़ नेल पॉलिश पे करते हैं, यानी जब हम अपने ही मुस्लिम को क्रिटिसाइज़ कर रहे होते हैं तो हम बहुत बड़ी बड़ी गलतियां करते हैं। याद रखिएगा, ये कोर्स आपको ये सिखाएगा कि जब तक किसी का अकीदा दुरुस्त ना हुआ, उसके अकीदे के झोल ना दूर हुए, आपने इबादत को टच नहीं करना, और जब तक किसी की इबादत सही नहीं हो जाती, आपने उसके अखलाकियात में तनकीद नहीं करनी, और जब तक अखलाक नहीं दुरुस्त होता, मामलात की बात नहीं। देखिए, है तो हम सारे इस्लाम के ऊपर एक ही वक्त पे अमल करने के मुकल्लफ, जैसे आंखें, कान, हाथ, दिल, दुमान, सारा जिस्म इकट्ठे ही काम कर रहा है ना, करना सारी चीज़ों पे अमल साथ साथ है, लेकिन एक चीज़ जो बेसिक है, अगर वो ठीक नहीं है तो दूसरी जो बात उससे बात की है वो ना ठीक, वो ठीक भी हो गई तो ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, बात मुश्किल हो गई है समझाती हूँ। मसलन किसी के हस्बैंड सिगरेट पीते हैं और नमाज़ भी नहीं पढ़ते, और शिर्क भी कोई बड़ा खुला है, आप उनको सुधारना चाहती हैं, कहाँ से सुधारेंगी? आप सिगरेट से नहीं शुरू करेंगी, नहीं प्यार नहीं करेंगी आप, ऐसे वक्त पे प्यार का कोई मौका नहीं होता, प्यार से समझाएंगी। जी वापस आ जाएं, पहले आप उनको बताएंगे कि ये सिगरेट का हुक्म और नमाज का हुक्म किस रब ने दिया है, किस हस्ती ने दिया है, ला इलाहा इल्लल्लाह। जब किसी की नज़रों में अल्लाह बड़ा हो जाता है ना, तो उसका हुक्म खुद ब खुद बड़ा हो जाता है। ठीक है, तो हम बाज़ दफ़ा बेमौका तबलीग करके फिर इतना ज़्यादा चिड़चिड़ा देते हैं कि फिर वो हमारी सही बात भी नहीं सुनते। ठीक है, तो जो लोग अपने घर वालों को, बच्चों को, शोहरों को और बीवियों को और फैमिलीज़ को कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा पे अमल करवाना चाहते हैं, उनके लिए भी ये कोर्स इंशाल्लाह फ़ायदेमंद होगा। दूसरा दावा ग्रुप वो होता है जो नॉन मुस्लिम्स को दावा देनी होती है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं और आप इसमें ब्लेस्ड हैं, कितने ब्लेस्ड हैं ये आप में खुद जानते हैं, कि जब हमें कोई राह चलता नॉन मुस्लिम मिलता है, यानी अब आप सवाल करें कि कोई गैर मुस्लिम आपसे मिला या औरत कोई मिलती है और आपसे कहती है कि व्हाट इज़ इस्लाम, आई वॉन्ट टू बी मुस्लिम, आई एम इंटरेस्टेड इन इस्लाम, फ्रॉम वेयर शुड आई बिगिन, तो ये कोर्स आपको बताएगा। कभी किसी गैर मुस्लिम से आपने कोई साइड के इशू पे बात करनी नहीं है, इवन दे वॉन्ट टू, इवन दे वॉन्ट टू इंगेज व्हाट, चार शादियाँ, पर्दा, हिजाब, और हज़रत आयशा की नबी सल्लम से शादी, और दाढ़ी। बात समझ गए? जो मीडिया पे फेमस टॉपिक्स है वीमेन राइट्स, वो चाहेंगे आपसे इन बातों पे, ये मैं प्रैक्टिकली लफ्ज़ बोल रही हूँ, जहाँ भी ट्रैवलिंग में नॉन मुस्लिम से बात होती है वो लोग हमसे ये सवाल करते हैं, तो आप उनसे उस सवाल को बड़े खूबसूरत तरीके से, ऐसे जैसे एक अच्छा प्लेयर देख लेता है कि इस बॉल को हिट करना है कि नहीं करना, एक आधा जुमला बोल के ना तो वापस आ जाएं। यू नो हु गॉड इज़, व्हाट डू यू थिंक अबाउट गॉड, व्हाट इज़ द पर्पज़ ऑफ लाइफ, व्हाट इज़ दिस, उस पे ले आए, डजंट मैटर, ओके, व्हाट इज, व्हाई यू वेयरिंग दिस निकाब, इज़ अ फर्ज, सुन्नत नफे, इट लीड वी लीव इट, इट्स नॉट अ बिग डील, कम आई विल टेल यू हुम आई एम ओबेइंग। बात समझ गए? जैसे हज़रत मूसा ने बड़ी प्यारी तबलीग की थी ना फिरौन को, सूरह शोरा में पूरी उसकी डिटेल्स हैं, कि साइड इश्यूज़ को छेड़ा ही नहीं, सिर्फ एक ही बात पे बात की। तो ये कोर्स इंशाल्लाह आपको, जब आपका जो माइंड क्लियर हो गया कि इस्लाम क्या है, तो डेफिनेट आप किसी को सोच के नहीं बोलेंगे। एक मिसाल दे देती हूँ, खाना पकाना नहीं आता तो सो फिक्र होगी पहले क्या डालना था, बाद में क्या डालना है, कब कितना डालना है, नाप के गिन गिन के डालते हैं ना। तो जब आप पकाने लग गए तो कभी सोचना पड़ा कि पहले क्या डालना था पुलाव में? सबको पता है ऑयल डलता है, बहुत सारा डलता है, फिर घी डलता, ऑयल में प्याज डलते हैं बहुत सारे, उनको खूब जलाते हैं, ज़ुबान होगी तो रोएंगे, हमें हमारा कसूर तो बताओ, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। लेकिन सबको पता है कि पुलाव बनाने के लिए सबसे पहले ऑयल गर्म किया जाता है, फिर प्याज डाल के उसको फ्राई किया जाता है, फिर पानी डाल के कलर निकालते हैं ना, ये तरीका है। आप पुलाव बनाना चाहें और आपको ये तरीका नहीं पता, और आप पहले पानी डाल दें, फिर घी डाल दें, फिर प्याज डाल दें, तो वो कभी भी कलर नहीं आएगा ना, बस यही फ़र्क है। आज हम मुसलमानों को रेसिपी ऑफ गुड इस्लाम नहीं आती, ये कोर्स इंशाल्लाह आपको मुझे इसके काबिल करेगा। ठीक है, चलिए मैं अब आपसे पूछती हूँ क्या इसकी ज़रूरत है। अल्हम्दुलिल्लाह, तो मेन चीज़ जो हमारे दो मेन सेशंस हुआ करेंगे इस पूरे कोर्स में, और वो एक तो इस्लाम के मुतल्लिक होगा, दूसरा जो इसके अंदर एक हिस्सा होगा हमारा वो है सफ़ीर। हु इज़ सफ़ीर? एम्बेसडर्स। एम्बेसडर का काम क्या होता है? टू रीप्रेजेंट। शाबाश, वेरी गुड। टू रीप्रेजेंट, एम्बेसडर ऑफ़ पाकिस्तान, एम्बेसडर ऑफ़ USA, एम्बेसडर ऑफ़ नॉर्वे, एम्बेसडर ऑफ़ टर्की, क्या करते हैं? उन स्पेसिफिक मुल्कों में जाकर अपने मुल्क को रिप्रेजेंट भी करते हैं, नंबर एक। दूसरी बात है, उस मुल्क में उनके मुल्क के रहने वाले लोगों के मसाइल को हल करते हैं, ये भी लिखें आप। यानी एक एम्बेसडर का काम क्या होता है? कम्युनिकेशन। ठीक है, नंबर एक यह है कि वो उस मुल्क में जाकर अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करते हैं। खुशी गमी पे उनको थैंक यू और मुबारकबादियाँ देंगे, आपको फलां एम्बेसडर की तरफ से ये कॉन्ग्रेचुलेशन दिस दैट। दूसरी बात है कि उस मुल्क में अगर उनके कोई रहते हैं तो वो उनको असिस्ट करेंगे, जैसे यूएसए, अब आप पाकिस्तान से हैं या इंडिया से हैं तो यूएसए में जो पाकिस्तानी एम्बेसी या इंडियन एम्बेसी होगी वो आपकी मदद करती है ना, जब कभी कोई आपके पेपर वर्क का इशू बनता है, कोई वीज़ा देना लेना होता है, तो एम्बेसडर ऑफ इस्लाम कौन होता है? सुभान अल्लाह, जिसको ये समझ आ गया ना, उसकी ज़िंदगी का किबला ही दुरुस्त हो जाएगा। और वो ये है कि वी नीड टू रिप्रेजेंट इस्लाम, वी आर द थर्ड चेन बिटवीन अल्लाह एंड पीपल। कुन तुम खैरा उम्मत नुखरीजत लिन्नास व कज़ालिका जअलनाकुम उम्मतं वसता। ये आयतें आप बहुत दफ़ा सुन चुके हैं, आगे भी सुनेंगे। बीइंग अ मुस्लिम, हम दो जिम्मेदारियों के मुकल्लफ हैं, यानी वी आर कह लीजिए कि ओब्लाइज टू, या हमें अल्लाह ने इस चीज़ का पाबंद किया है कि नंबर एक ख़ुद भी नबी सल्लम के उम्मती बनकर इस दीन को समझें, लेकिन जो दूसरा बड़ा काम है कि हम दूसरों तक बात पहुंचाएं। ये काम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के सहाबा ने बेहतरी के साथ किया। ये आज ब्रेक के बाद का बहुत ही खूबसूरत सेशन होगा इंशाल्लाह। हम इसमें सिर्फ इस कोर्स में अशरा मुबशरा को पढ़ेंगे, हालांकि वो कहते हैं ना कि हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इर्द गिर्द जो लोग थे उनमें से किसको पढ़ो और किसको ना पढ़ो, दिस इज़ अ बिग क्वेश्चन मार्क। जैसे आप बहुत खूबसूरत जगह से शॉपिंग कर रहे हैं तो आपको समझ नहीं आता क्या लूँ तो क्या छोड़ूँ, कभी ऐसी जगह होती एक भी नहीं चीज़ अच्छी लगती, और कोई ऐसी भी जगह होती ना क्या लूँ क्या ना लूँ। सहाबा कराम में से हर एक एक फूल है जिसकी खुशबू फैली और दुनिया मुअत्तर हुई। एक किसी इंग्लिश राइटर है, नाम इस वक्त नहीं याद मुझे, मैंने उसकी कोटेशन पढ़ी थी, वो कहता है कि हर नेशन के पास कोई एक हीरो है ना, हर एक का होता है ना, अपने अमेरिका के कुछ हीरोज़ हैं जिनके नामों पे मेमोरियल डेज हैं, कुछ जगहों के नाम होंगे, रोड्स के नाम होंगे, ऐसे ही हर मुल्क के पास होते हैं हीरोज़। वो कहते हैं कि हर नेशन के पास देयर अ कपल ऑफ हीरोज़। पाकिस्तान है तो आप देखिए कि मोहम्मद अली जिना, अलामा इकबाल, मोहम्मद अली जौहर, 8-10 नाम मशहूर है ना। बट वो कहते हैं कि इस्लाम मुस्लिम्स दे हैव अ बंच ऑफ हीरोज़, जिसको उसने नाम दिया ना, उसको अगर उर्दू में तो मैं ट्रांसलेट करूँ ना तो वो कहता है कि मुस्लिम्स के पास तो फूलों की एक क्यारी है। क्यारी समझते हैं, छोटे छोटे फूलों के उसमें बीज होते हैं, फिर वहाँ से आप दूसरी जगह लगाते हैं। उसका मतलब ये था कि मुस्लिम्स की हिस्ट्री पढ़ के देखो तो दिस इज़ द नेशन ऑफ हीरोज, और इट्स ट्रू। तो इसमें इंशाल्लाह इस शॉर्ट कोर्स के नाते से हम उन 10 सहाबा की बात करेंगे जिनको दुनिया में ज़ुबाने सिद्क से, और वो कौन सी थी, वमा यंतिकुनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयुन युहा, कि वो अपनी मर्ज़ी से नहीं बोलते थे। अगर उन्होंने कह दिया कि उस्मान फिल जन्ना, और उन्होंने अगर कह दिया अबू बकर फिल जन्ना, तो वो फिर जन्ना में ही होंगे। तो इंशाल्लाह हम इन 10 सहाबा की पढ़ेंगे। आज का हमारा जो लेक्चर होगा वो इस मौजू पे होगा कि वाई दे वर गिवन दिस ग्लैड टाइडिंग। ये क्या हो गया कि लाखों में से 10 के नाम आ गए, बात समझ गए ना। तो हम इंशाल्लाह उस ओवरऑल हिस्से को सहाबा की शान में आज पढ़ेंगे। फिर इसमें दो चीज़ों के बिटवीन जो थर्ड थिंग हमारे पास हुआ करेगी वो स्टोरी टाइम है। नेकी के सफ़ीर एक मौजू को हम कंटिन्यू करेंगे, बुक ऑप्शनल है, स्टोर पे होगी, अगर आपका दिल चाहे ले लीजिए तो ले ले। ये वो स्टोरीज़ हैं जो आज के दौर के सफ़ीरों की हैं, यानी हिस्ट्री से तो हम पढ़ेंगे अशरा मुबशरा के हालात, फिर हम कहते हैं वो तो बहुत अच्छा दौर था, वो तो बहुत अच्छा दौर था, उन लोगों की तो क्या बातें, हम आज कैसे उन जैसे बन जाएं, राइट। कभी कभी ये भी हम प्रिविलेज यूज़ कर लेते हैं ना, नहीं तो उसमें वो बहुत सिंपल सी बुक है, बहुत नाइस बुक है, छोटी सी स्टोरी बुक है। तो उसमें इंशाल्लाह हम आखिरी हिस्से में अपने एक एक डेली स्टोरी पढ़ लिया करेंगे, स्टोरी की तरह सुना दूंगी, आप सुनना चाहें सुन लें, पढ़ना चाहें पढ़ लें, ठीक है। और आखिरी चीज़ फिर दुआएं। हम वो काम जो अपनी कोशिशों से नहीं कर सकते वो हम दुआओं से कराते हैं। मुस्लिम बिलीवर उसका काम क्या होता है, अपनी पूरी सी कोशिश करता है किसी भी काम को करने की, और उसके बाद फिर बाकी मामला अल्लाह पे डाल देता है। और मैं आपको इतनी सी बात बता दूं कि आप में से जो साथी यहाँ आकर ये कोर्स कर रहे हैं, क्योंकि ये कोर्स आपको यहीं मिलेगा, ये इस बात का सबूत है कि आप सीरियस हैं इस्लाम सीखने में। बात समझ रहे? अगर आप यहाँ आके बैठ के ये कोर्स कर ही नहीं पा रहे, तो व्हाट वी कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम यू नेक्स्ट? बात समझ गए? अल्लाह भी तो देखता है ना, हमारे बच्चे तो दूसरे मुल्कों, दूसरे शहरों में चले जाएं। ये कोर्स तो मैं सोचती हूँ कि अगर पता लग जाए कि इसमें हमने सीखना क्या है, पीपल विल ट्रैवल फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड, दूसरे कोनों से आए, क्योंकि इस वर्थ इट, इस वर्थ इट। और इंशाल्लाह ये गवाही आप लोग देंगे और छोटी छोटी दुआएं इंशाल्लाह सीखते जाएंगे। तो दिस इज़ द एम्बेसडर्स ऑफ इस्लाम। आप बताएं कितनों के दिल में तड़प है इसको करने की, जो जाना चाहे वो जा भी सकता है। आज तो इंट्रो क्लास है, एवरी वन इज़ वेलकम। और कितनों को ये तड़प आ रही है कि उनकी फ्रेंड्स भी ये कोर्स करें, और उनकी सिस्टर्स भी करें, और उनके ब्रदर्स भी करें। आपका दिल करता है सारे मुस्लिम ही करें, सारे तो इधर नहीं आ सकेंगे, लेकिन और ये तड़प। और जब कोई ये कहते ना, मैं ये नहीं कर सकता, मेरी जॉब है और मेरी, तो फिर मैं सोचती हूँ कि अभी लेवल नहीं है, अभी उनको ये इतना कुछ मिलने, शायद अभी दे आर नॉट रेडी फॉर दैट। अलहमदुलिल्लाह जी। और कोई बात? इससे थोड़ा सा अंदाज़ा हो गया। अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट लॉट पे, तिलावत सुनेंगे सूरत इब्राहिम की आयतों की। आप सबके पास मुसहफ़ हैं? मुसहफ़ करें। पहले हमने सोचा था, मैं आपके साथ थोड़ी सी ये भी डिस्कस कर दूँ, ये बात सिर्फ आप लोगों के लिए, बाद में जो लोग कोर्स करेंगे उसकी कैफियत बिल्कुल फ़र्क होगी। हमने वर्कबुक रेडी की हुई है आपकी, बट मैंने आखिरी वक्त पे इनको रोक दिया कि हमें आपको स्पून फीडिंग नहीं देनी, हम आपको अब डेली शीट्स देंगे और आप लिख कर उसकी रोशनी में अगले दिन और अगले ग्रुप्स में और हर वीकेंड पर अपनी चीज़ें सबमिट कराएंगे। यानी दिस इज़ जस्ट लाइक थीसिस बेस्ड, एज यू आर डूइंग PhD इन इस्लाम। आपको पता है ना PhD में क्या होता है? आठ, चौथी पांचवी क्लास के बच्चे का बैग कितना भारी होता है? 8-10 बुक्स। और PhD में कोई नहीं होती, आपने लिखनी होती है बुक। तो आप इसमें इंशाल्लाह मेरे मुआविन होंगे। जो बातें भी यहाँ हो रही हैं आप सब के लिए ओपन चॉइस है। इंशाल्लाह आपको डे बाय डे एक एक चीज़ की बता दिया जाएगा, आपके कैसे पेयर्स या ग्रुप्स बनते हैं, सबमिट करें अपनी चीज़ें, और वो सारी चीज़ें इंशाल्लाह इस कोर्स का हिस्सा बनेंगी, जो आपको एक सेंस ऑफ अचीवमेंट देंगी इंशाल्लाह। फिर वो मेन वर्कबुक के अंदर ऐड करके जब फ्यूचर में ये कोर्स ऑफर किया जाएगा, तो इसमें इंशाल्लाह आप लोगों का हिस्सा होगा। ठीक है? एक्साइटेड? डरे हुए तो नहीं है? चलिए, जजाकल्लाह खैर। मुझे नहीं शीट दी आपने, इसलिए कि मैंने रजिस्टर नहीं किया कोर्स है? अच्छा जी, चलिए अब आप लोग रेडी रहिए। अपने मुसहफ़ में सूरत इब्राहिम खोल लीजिए। और मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि इस्लाम बेसिकली शुरू कहाँ से होता है और आगे किधर है, और आयत नंबर 24 से, सूरत अल इब्राहिम आयत 24। बिल्कुल डूबे, ये लाइट कम नहीं हो सकती थोड़ी? बहुत अच्छे।
طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله
अल्हम्दुलिल्लाह। आप में से कितनों को इसकी तिलावत के दौरान कुछ बातें याद आ गईं जो आप इसकी तफसीर में सुन चुके हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए फिर उसको रिवाइज़ करते हैं। नहमतुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम रब्बिश्रहली सदरी व यस्सिरली अम्री वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हु क़ौली ربي يسر ولا تسر وتمم بالخير. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة. کیا تم نے نہیں دیکھا کیسے بیان کرتا ہے اللہ ایک مثال کلمہ طیبہ کی. کیا ہے وہ؟ کا شجرت طیبہ، جیسے ایک طیب درخت، پاکیزہ درخت. جہاں میں رکتی ہوں وہاں آپ کوما لگا سکتے ہیں. کیا ہے وہ درخت اور اس کی کیفیت کیسی ہے؟ اسلحہ ثابتن، اس کی جڑ بڑی مضبوط ہے، جمی ہوئی ٹھکی ہوئی. اور وہ فرعہا فی السما، اور اس کی شاخیں ہیں آسمان میں، یعنی بہت پھیلا ہوا جھاڑ ہے اس کے اندر. یعنی وہ درخت ایسا ہے کہ جو ڈیپ روٹیڈ بھی ہے اور اس کی برانچز اتنی پھیلی ہوئی ہیں اور اتنا اونچا ہے کہ آسمان سے باتیں کرتا دکھتا ہے. اگلی خوبی لکھیں، 1 2 3 کر کے لکھیں گے تو 6 7 چیزیں جمع ہوں گی. نیکسٹ اس کی خوبی کیا ہے؟ توتی اکلہا کل حین بإذن ربہا، وہ دیتا ہے اپنا پھل ہر موسم میں. حین سال کو بھی کہتے ہیں نا، پورا سال، ایور گرین ہے پورا سال، سیزنل نہیں ہے، گرمی سردی نہیں، بلکہ وہ ہر وقت پھل دیتا ہے. لیکن یہ پھل آتا کب ہے اور کس وجہ سے آتا ہے؟ بإذن ربہا، اپنے رب کے حکم سے. یعنی یہ درخت اپنے مالک کی بات سنتا ہے، رب جو کہتا جاتا ہے وہ کرتا جاتا ہے. یہ بس بات ختم ہو گئی. وَيَدْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ، اور بیان کرتا ہے اللہ مثال کو. کس کے لیے؟ ایک نہیں، بہت ساری مثالیں. لِلنَّاس، لوگوں کے لیے. ناس میں مسلمان نہیں ہے صرف، یعنی کہ لِلَّذِينَ آمَنُوا، ہیومینٹی اور مینکائنڈ. اللہ انسانوں کو یہ مثالیں دیتا ہے. کیوں؟ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، تاکہ وہ نصیحت پکڑیں. یہ آیت، اس کی تفسیر جب ساتھی سنتے ہیں، اور آپ میں سے اکثر سن چکے ہیں، تو اس آیت کے ساتھ جو واقعات آتے ہیں وہ آپ کو یاد ہوں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ اپنے صحابہ سے پوچھا تھا کہ یہ بتاؤ کہ وہ کون سا درخت ہے جو کبھی خشک نہیں ہوتا اور جو بہت لمبا ہے. یعنی آپ نے کچھ ایسی ڈسکرپشن دی کہ صحابہ کو پتہ بھی لگ گیا ہوگا، لیکن وہ بولتے نہیں تھے اس وجہ سے کہ کہیں غلط نہ بول دیں، خاموش رہے. لیکن ابن عمر رضی اللہ عنہ جو اس موقع پہ وہاں موجود تھے، اور ابھی ینگ ایج کے، ینگ لڑکے تھے، بوائے تھے، لڑکا تھے، تو انہوں نے بعد میں اپنے باپ کو کہا کہ اللہ کے نبی نے جو جواب بتایا تھا مجھے بھی وہی بتا تھا، پر میں اس لیے نہیں بولا کہ وہاں تو آپ سب بڑے بڑے بھی بیٹھے ہوئے ہیں، تو میں نے مناسب نہیں سمجھا. تو اس وقت حضرت عمر نے کہا تھا، اور میں کہوں گی کہ اللہ کرے آج ہماری نسلیں بھی اتنی اللہ اور اس کے رسول کی بات کو سمجھنے والی بن جائیں کہ ہم ان کو بھی یہی کہہ سکیں. اور انہوں نے کہا کہ بیٹا، اگر تو وہاں یہ بات بتا دیتا تو مجھے دنیا اور اس کی ہر چیز سے زیادہ پیارا ہوتا. یعنی کہ میرے بچے کو اللہ نے اتنا فہم دیا. لیکن اس ساری بات کو آگے بڑھا لیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کھجور کا درخت ہے، اور کھجور کا درخت ٹری آف ایمان ہے. آج ہم اس کی تفسیر نہیں کر رہے، لیکن میں آپ کو جو چیز بتانا چاہتی ہوں، آپ دیکھیے کہ کبھی بھی آپ نے کوئی درخت لگایا ہو یا آپ کو پلانٹنگ کا شوق ہو، چلیں یہ تصور میں لائیے کوئی آپ کو ایک پودا دیتا ہے کہ آپ اس کی دیکھ بھال کریں. اف سم ون گیوز یو اے پلان ٹو ٹیک کیئر آف اٹ، ہاؤ ڈو یو تھنک یو ول ڈو؟ آپ کسی پودے کی حفاظت کیسے کریں گے؟ کیا آپ اس پودے کو ہر ممکن طریقے سے ٹیک کیئر نہیں کریں گے؟ کیا آپ اس سے ہر اس چیز کو دور نہیں کریں گے جو اس پودے کو دور کر دے؟ ایسے ہی ہے نا. کیا آپ اس پودے کو فروٹ فل بنانے کے لیے اپنی ساری ایفرٹس نہیں لگائیں گے؟ کیا آپ اس کو وہ ماحول، وہ ایٹماسفیئر، وہ کھاد، وہ پانی، وہ روشنی نہیں دیں گے جو اس کے لیے ضروری ہے؟ ایسے ہی ہے نا. بس اسی کو لے لیجئے. اللہ نے آپ کو مجھے ایک پودا دیا ہے، ایمان کا پودا. جب ایمان کا پودا صحیح طریقے سے صحیح جگہ پہ لگا دیا جاتا ہے، تو اس کے بعد پھر اس پودے پہ بہار بھی رہتی ہے اور پھل بھی آتا ہے. ذرا سا وہ پروسیس ذہن میں رکھ لیجئے، جو سٹیپس ہوتے ہیں. سب سے پہلے ایک بیج جو آپ زمین میں ڈالتے ہیں، وہ بیج نہ ہو ज़मीन बहुत अच्छी हो तो भी कुछ नहीं निकलता, मौसम ठीक ना हो जिसमें बीज डाला तो भी नहीं निकलेगा। चलिए, आइडियल सिचुएशन क्या है? द बेस्ट काइंड ऑफ सीड, नंबर 1, बीज अच्छा जो आपने डालना चाहा। दूसरी बात, ज़मीन बड़ी अच्छी है, फर्टाइल सॉइल। बीज है अल्लाह की मोहब्बत, मार्फत, लव ऑफ अल्लाह। ज़मीन है आपका दिल, बंदा मोमिन का दिल। पहले तो वो कुफर का दिल होता है, काफिर का होता है। जब अल्लाह की मोहब्बत डलती जाती है तो वहाँ से इस्लाम ग्रो करना शुरू हो जाता है। फिर उसके बाद तीसरी चीज़ क्या है कि जब बीज उसमें डाल दिया तो छुपा दिया। कोई बीज शीशे के कंटेनर में आप रख दें, 10 साल भी पड़ा रहेगा लेकिन उसमें से पौधा नहीं निकलेगा। तो ये बीज हमारी नियत, हमारा इखलास है। ईमान का नुक्ता आगाज़ दिल में अल्लाह की मोहब्बत के डलने से होता है। जब वो बीज अंदर जाता है, कुछ दिन तक उसको दबा के रखना चाहिए। पकते खाने को बार बार खोलें तो उसका टेस्ट ख़त्म हो जाता है। इस तरह पौधे को, बीज को मिट्टी में डालने के बाद अगर थोड़े दिन बाद जा जा के खोल के मिट्टी को हिला के देखें कहाँ गया कहाँ गया, तो वो बीज ज़ाया हो जाएगा। इसी तरह जब आपके मेरे दिल में अल्लाह की मोहब्बत का बीज डले ना, तो शुरू में ज़्यादा एक्सपोजर नहीं देना चाहिए। अपनी नई नई नेकियों को छुपाएं, कोई भी है, तहज्जुद पढ़ रहे हैं, हिफ्ज़ कर रहे हैं, सदका कर रहे हैं और या कुछ भी। जब हम बहुत जल्दी अपने नेकियों के कामों को बाहर खोल के दिखाने लग जाते हैं ना, तो नंबर 1 हवा लग जाती है, दूसरी बात है नज़र लग जाती है, तीसरी बात याद रखिएगा मुखालफत शुरू हो जाती है। और मुखालफत अभी आप बर्दाश्त कर नहीं सकते, सॉरी, अभी आपका वो ईमान नहीं है कि आप मुखालफत के बावजूद उस ज़मीन में ठोके रहें, तो डर क्या होता है कि वो फिर पौधा आगे नहीं बढ़ेगा। जब आपने कुरान पढ़ा या पढ़ेंगे, आपके दिल में अल्लाह की मोहब्बत का बीज डलेगा। वल्लज़ीना आमनू अशद्द हुब्बल लिल्लाह होगा आपके साथ, उसको आपके अंदर रहेंगे। जितना ईमान अंदर रहता है ना, उतनी ताकत बनता है। जैसे आपने कभी गैसी गुब्बारा देखा हो, तो उसके अंदर जब गैस भरी जाती है ना, तो उसमें एक ताकत आ जाती है, एकदम छोड़ें छत पे चला जाएगा। लेकिन एक हल्की सी सुई के साथ रप्चर कर दें उसको, तो सब गिर किया किराया काम नीचे आ जाएगा। इसी तरह से पहले सबसे जिस चीज़ पे आपने अपने और दूसरों के काम करना है, वो ईमान है। और ईमान को रूट्स पे रखिए। जब नया नया बीज डलता है और फिर उसके बाद क्या होता है, कोमल निकलती है। कुछ कुछ दिन के बाद आप जाके देखते हैं और एकदम चीख मारते हैं, आ पौधा निकल गया। वो लाइट सी हल्की डंडली सी पतली सी झूमती झामती, और उस पर एक बिल्कुल कच्चा सा पत्ता लगा होता है। आप कहते हैं देखो मेरा बीज फूट गया। इसी तरह से जब दिल में ईमान आता है, शुरू में बहुत कच्चा होता है, बहुत थोड़ा होता है, सारे दोस्तों फ्रेंड्स अपने प्यारों कजन्स में इंसान अजनबी लगने लगता है, एक नई दुनिया आपके अंदर आने लगती है। और उसके बाद जब फिर हल्के हल्के उसका इजहार शुरू होता है, यहाँ ज़रा सा सोचिए, बड़ी खूबसूरत मिसाल मैंने कई दफ़ा दी है, आज आपका भी हक है कि आपको दूँ। मट्टी में बीज डालने से पहले मट्टी को क्या करता है किसान? गोडी करता है, प्लॉक करता है ना। सख्त ज़मीन में जाकर बीज डाल दें तो नहीं होगा, हल चलाना जिसको कहते हैं। आप तो उसमें मशीनों से हेल्प ली जाती है ना। पहले दौर में लोग जानवर के पीछे एक लोहे का डंडा सा बांध के, जिसके नीचे अंकड़े से बड़े बड़े ऐसे कील या हुक्स लगे होते थे, तो वो ज़मीन पे चिलाते हैं ना, फिर ज़मीन नरम होती थी, फिर बीज डालते हैं ना। मेरा आपसे एक सवाल है, वही ज़मीन है ना जिसमें बीज डालने के लिए इंसान को मशीनों से भी मदद लेनी पड़ी, लेकिन वो नन्ना सा बीज अंदर गया, उसमें कहाँ से इतनी ताकत आ गई कि वो उसी ज़मीन को अपनी कमज़ोरी के साथ ही फाड़ के ऊपर आ गया। बात समझ है? जब बीज को अंदर डालने के लिए ज़मीन को नरम किया था, तो जवाब है कि जब ज़मीन से फिर कुछ निकालना है तो भी तो नरम करना पड़ेगा ना। ये चीज़ है पावर ऑफ ईमान। एक बीज के अंदर इतनी ताकत मौजूद है कि वो सख्त मट्टी को फाड़ कर उसमें से इजहार मांगता है, ईमान भी इजहार मांगता है। ये कभी हो नहीं सकता कि आपके दिल में अल्लाह की मोहब्बत का बीज डल चुका हो, आपको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्यार हो चुका हो और आपका अकीदा आखरत दुरुस्त हो चुका हो, और उसके बावजूद आप इजहार ना करें। फिर वो सारे जुमले काट दीजिए जो हमारे इंडो पाक कल्चर में मारूफ हैं, अंदर से बड़ा नेक है, नज़र नहीं आता, वो दिल के बड़े अच्छे हैं, वो अमल नहीं कर पाते फुला, ये नहीं हो सकता। ईमान इजहार चाहता है। इसकी मिसाल कुरान में 7वें पारे की पहली आयत है, वइज़ा समीउ मा उन्ज़िला इलर रसूली। हबशा के बादशाह और उसके 70 साथी जब अल्लाह के नबी का कलाम सुनते हैं तो उनकी आंखें बह निकलती हैं। क्यों? मिम्मा राफू मिनल हक। और ये बात आपको मिलती है सूरह तहरीम में, एक कमज़ोर सी औरत बीबी आसिया की तरफ से, फिरौन जैसे अमीर कबीर शोहर की बीवी और जालम और जाबिर तरीन हुक्मरान की बीवी होना भी बीबी आसिया को इजहार से नहीं रोक सका। मौत की धमकी क्या देते हो, जल्दी करो क्योंकि रब इब्न लि इंदका बैतन फिल जन्ना। ऐ मेरे रब, मैं तो जन्नत में तेरे बिल्कुल करीब ही रहना चाहती हूँ। तो ये बात नोट कीजिएगा कि पोटेंशियल अगर है ना आपके अंदर ईमान का तो अमल ज़रूर आएगा। पूरा कुरान पढ़ जाए और अमल ना आए, या उतना ना आए जितना आना चाहिए, तो दो में से एक बात होगी, अभी अंदर आपके वो ताकत नहीं है। हमारे ऊपर सबसे बड़ा हमला हमारे अपने नफ्स का होता है। वी नीड टू स्ट्रगल फॉर दैट। हम जब अपने अंदर को पुख्ता कर लेते हैं ना, तो वो कहते हैं ना, जो हो जौके यकीन पैदा, तो कट जाती हैं जंजीरें। ये ज़मीन की मट्टी खुद ब खुद हटनी शुरू हो जाती है जब पौधे को इस बात का यकीन आ जाता है कि मैंने निकलना है। इसमें सवाल, इस सवाल में हर उस सिस्टर का जवाब है जो कहती हैं, मैं बहुत कुछ करना चाहती हूँ लेकिन मेरे हालात ठीक नहीं है, मेरे माहौल ख़राब है। नोट करें, कच्चे पौधे को सर्वाइवल के लिए एटमॉस्फेयर की ज़रूरत होती है, क्योंकि जैसे बीज और मट्टी की मिसाल दी है ना हमने, अगली चीज़ क्या चाहिए होती है पौधे को पनपने के लिए? ऑक्सीजन, पानी, माहौल अच्छा हो, ऐसे ही है ना। अब ये सब कुछ चाहिए उस पौधे को, कच्चे कच्चे पौधे को माहौल मुतासिर करता है। फिर सोचिए, डिस्ट्रैक्ट ना हो। नया नया ईमान जब आता है, नया नया अल्लाह का हुक्म मिलता है, नई नई बात समझ आती है ना, तो आप अपने इर्द गिर्द वालों का मुंह देख रहे होते हैं, NOC सर्टिफिकेट मांग रहे होते हैं, आई विल डू दिस थिंग बट नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट चाहिए। मैं ये कर लूँ मियाँ साहब, आपको कोई इस पे ऑब्जेक्शन तो नहीं? और अपनी दोस्तों और फैमिली से हम इजाज़तनामे तलब कर रहे होते हैं कि अगर मैं अल्लाह के हुक्मों पे अमल करती जाऊँ तो तुम मेरे से नाराज़ तो नहीं होगे। लेकिन एक वक्त आता है जब आप मजबूत दरख्त बन जाते हैं ना, तो फिर आपका सर्वाइवल माहौल पे नहीं रहता, फिर आप अपनी रूट्स पे खड़े होंगे। इसमें दो तरह के लोगों को एड्रेस करूंगी, जिनकी ज़िंदगी में भी नया नया कुरान आया है, अभी पढ़ा ही नहीं है, चलें या पढ़ना शुरू किया है, ये तो वाकई थोड़े से कमज़ोर होंगे अपने माहौल के आगे। कोई बात नहीं, इट टेक्स टाइम। या एक जुमला लिख लीजिए, ईमान का ये पौधा बढ़ते बढ़ते ही बढ़ता है, एक दिन में नहीं उगता, साल हर साल लग जाते हैं। आप एक छोटी सी बेल लगाएं, सोचिए अल्लाह ने बेल की मिसाल क्यों नहीं दी? क्या कहते हैं बेल्स को इंग्लिश में, जो ज़मीन पे होती हैं? वाइन्स, यानी कच्ची बेल है, कद्दू लगा हुआ है, तरबूज है, खरबूजा है, क्रीपर्स। अल्लाह ने इस जगह दरख्त की बजाय बेल की मिसाल क्यों नहीं दी? सिंपल सा जवाब दूं, बेल फैलती बहुत जल्दी है, दिनों में फैलती है, लेकिन पीछे एक डंडी है सिर्फ, एक डंडी काट दें सारी बेल मुरझा जाएगी। इसके बरक्स ईमान का दरख्त एक है, लगता सालों में है, लग जाए तो काटने वाले को समझ आ जाती है। ईमान दरख्त की तरह बढ़ना चाहिए, बेल की तरह नहीं। बाज़ लोग फौरन भागते हो, ये हो गया, ये करे, जज्बात, इमोशनल, और उसका नुकसान क्या होता है कि हम दूसरों की नज़र में आ जाते हैं, लेकिन फिर ज़रा सी मुखालफत हुई हम दब के बैठ गए, हम कहते नहीं मेरे से नहीं ये बर्दाश्त, मैं अपने शौहर की आंखों में ये बेगानगी नहीं देख सकती, और मैं अपनी दोस्तों का ये मूड नहीं देख सकती, और मैं अपने छोटे छोटे बच्चों को नाराज़ नहीं कर सकती। एक औरत थी, मैं मिसाल इसलिए देती हूँ कि प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स ही तो लेने आए हैं, ठीक है साहबा की बात तो पीछे करें। वो निकाब करती थी, कई उसने समझ के शौर से किया, 3-4 साल मैंने भी उसको देखा, फिर एकदम मैंने अचानक देखा तो निकाब में नहीं थी। इस दौरान फ़र्क एक ही आया था कि उसको बेबी मिल गया, काफ़ी साल से नहीं था बच्चा उसके पास, थे बच्चे बड़े थे लेकिन इसके पास छोटा बेबी नहीं था। तो मैंने कहा क्या हुआ, अब सुनिए जुमला। अब वो कोई भी थी, अल्लाह उसको ईमान का दरख्त बनाकर बराबर कर दे, या आप में से मेरे में से किसी की भी बात हो सकती है। मैंने कहा ये क्या, ऐसी बातों में खुद ही बता रही थी। कहने लगी ये मेरा बेबी है ना, जब मैं इसको उठाती तो ये मेरा निकाब छी उतारता, ही डोंट लाइक माई निकाब, तो मैंने इसकी वजह से करना ही छोड़ दिया। ये है पहली गलती। अल्लाह को छोड़कर किसी बंदे को अगर आप ऐसा मुकाम दे देंगे, और आज इतनी बड़ी आजमाइश में उस बच्चे की वजह से, अल्लाह ना करे किसी पे आए, कोई बंदा अपने बच्चों और औलाद का नाम लेकर दीन से रुकता है ना, अल्लाह दुनिया में फिर उसको वापस लाता है इंशाल्लाह, बड़ी आजमाइशों में डालकर। तो याद रखिएगा किसी का हक नहीं है ये दुनिया में। मैं निकाब की बात नहीं कर रही इस वक्त, कल भी हमसे किसी ने एक सवाल किया, हम रास्ते में ट्रैवलिंग में एक जगह रुके तो ये कन्वीनियंस स्टोर थे, तो वहाँ एक यंग लड़की थी बड़ी अच्छी, तो वो हम में से सारे साथियों को देख रही थी, तो हम में से हर एक का गेटअप फ़र्क होता है ना, हर एक का ही होता है। तो मुझे कहने लगी वाई यू कवर एंड द अदर्स नॉट, अब ये उसका सवाल था। अब एक बात है मैं उसको फ़िक्र पढ़ाती, इमाम शाफी का ये कॉल, इमाम मालिक ये कहते, इमाम अबू हनीफा का ये। मैंने उसे कहा ओके होल्ड ऑन, ठीक है, वो कस्टमर कोई आया, मैंने कहा इसको फारिग कर ले। मैंने कहा इफ़ यू आर अ मॉम, यू हैव 3 किड्स, ओके, तुम्हारा एक बच्चा है जो तुम्हारी हर बात मानने के लिए पहले से तैयार है, दूसरा कुछ मानता है कुछ नहीं मानता, और तीसरा बिल्कुल नहीं मानता, तो तुम क्या करोगी, किसको अच्छा कहोगी? कहती ऑफ कोर्स फर्स्ट वन। तो मैंने कहा दीज आर दी स्टेप्स, अल्लाह सुबहान तला से इट्स ओके, इट्स बेटर, इट्स बेस्ट, सम पीपल आर ऑन द बेस्ट लेवल, सम आर ऑन द गुड बेटर। कहती दैट मीन यू आर ऑन द बेस्ट लेवल। मैं कह नो, यू डिडेंट सी बेटर पीपल देन मी, आई एम स्ट्रगलिंग, आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। अब आप देखिए इससे उसको ये तो पता चल गया ना कि मुस्लिम में कॉन्ट्राडिक्शन किस बात का है। तो अगर मैं वहाँ उसको कहती ये हराम ये हलाल, और ये कोई इशू ही नहीं था, मैंने उसको फ़ौरन ये बात में कि लीव इट, इट्स नॉट अ बिग डील, उसके लिए ये बिग डील नहीं थी, मेरे लिए तो बहुत बिग डील है। कल आपके आपने उनको कहा था इट्स नॉट अ बिग डील, तो फिर आप भी निकाब उतार के खोल के मुँह में फिरे, इट्स अ बिग डील फॉर मी बिकॉज आई वॉन्ट टू बी द मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट ऑफ माई अल्लाह सुबहान तआला। और मुझे बात समझ आ गई है, दूसरों को भी नहीं आई, आ जाएगी उनको भी, इट विल टेक टाइम। तो याद रखिए ईमान ग्रो होता है थोड़े थोड़े, हर साल आपको तो दरख्त के इर्द गिर्द एक साइकिल बनता है, जिन्होंने भी बॉटनी पढ़ी है, मेरा फेवरेट टॉपिक था एक वक्त था, मुझे दरख्तों से बहुत प्यार है, बिलीव मी, मुझे बच्चे लगते हैं, मेरा कहते इनको लिपटूँ, प्यार करूँ, इनको किस करूँ, और अल्लाह ने मुझे दरख्त दिखाए भी बहुत है, हर रंग हर स्टाइल का। मैं किसी भी इलाके में जाऊँ मैं सबसे पहले वहाँ के दरख्तों के पत्ते स्टाइल देखती हूँ, क्योंकि अलम तरा कई फ़दर अल्लाह मसलन कली मतन तयबा। तो वापस आ जाए उस मिसाल पे, पहले ईमान आया, अगर अंदर ईमान स्ट्रांग होगा महीनों का फासला तय हो जाएगा एक दिन में। मेरी भी पिछली मिसाल से आपके इट विल टेक टाइम, ओके, अभी तो 1 साल हुआ कुरान पढ़े हुए, 10 साल बाद वी विल ओबे एवरीथिंग, ये भी नहीं होगा, ये साथ साथ ग्रो होता है। मैंने अपने सालों में पिछलों में देखा है कुछ स्टूडेंट्स में दूसरे पारे में चेंज आ जाती है, कुछ में तीसरे में, कुछ पाँचवें पे, और कुछ 5 बार पढ़ के भी नहीं अमल कर पाते पूरा, ये उनकी चॉइस है। लाइक रहाफ़िद्दीन, हक ये है जिसको मानना मान ले, जिसको जितना ऊंचा जाना है ना वो उतनी अल्लाह की बात मानेगा। असल बात है इजहार। मिसाल देती हूँ आपको, ये जो शुरू में दी ना कि कॉम्पल ज़मीन से निकलती है तो कैसे अपना सर उठा के ऊपर जाती है। एक शख्स थे तो उनका घर था काफ़ी पुराना, उनको फील हुआ कि जो घर की फाउंडेशन है ना दीवार में इधर, उसमें क्रैक आने लग गया। खैर 1-2 साल तो बर्दाश्त किया, लेकिन इट मेक अ बिग इशू। उन्होंने इंजीनियर्स को बुलाया कि कम एंड लुक एट माय होम। जब उन्होंने आकर देखा और सारा इधर बाहर अंदर से देखा, तो व्हाट दे फाउंड, बड़ी हैरत की बात है। उन्होंने कहा बाहर, जैसे कि अब हमारे बाहर दरख्त दिख रहे थे, बाहर एक दरख्त था उनके घर के मेन पे, उन्होंने कहा कि ये दरख्त है ना, जब ये घर बना था ये दरख्त तब भी था, नो प्रॉब्लम, अब वक्त के साथ उस दरख्त की रूट्स बड़ी हो के अब वो इस वक्त आके तुम्हारे इस घर की रूट्स को, फाउंडेशन को टच कर रही है, और ये जो घर में क्रैक्स आ रहे हैं ना वो जड़ मुस्तकिल बढ़ रही है, और अगर तुमने इस दरख्त को ना काटा तो ये घर गिर जाएगा। दिस इज इजहार, असलुहा साबितुन, असल साबित कीजिए अपनी, असल कहते हैं रूट को, जड़ पक्की करें। اور یہ اصل ابھی دکھاؤں گی آپ کو کچھ چیزیں, آپ کو یہی سارا مہینہ ہم نے بات کرنی ہے. آپ اگر کچھ کرنا چاہتے ہیں باہر کی لیپا پوتی مت کریں. اوپر کے رنگ ڈالنے اور فاؤنڈیشن اور پاؤڈر لگانے سے آپ خوبصورت وقتی طور پہ دکھیں گے, بٹ ریئل ہیلتھ از یور ان سائڈ ہیلتھ. شائنی گلوئنگ فیسز, فریش ریفریشمنٹ اندر سے آتا ہے. ہم بعض دفعہ بہت ساری ظاہری چیزوں کو اوپر دیکھ کر کر کے کہتے ہیں یہ ہے ایمان, آپ کے اندر اتنا ایمان ہو آپ کھڑے ہی نہ رہ سکیں, اللہ کو حکم سن کے ڈھہ پڑیں. ایمان ڈھہ پڑنے کا نام ہے سرنڈر. اس قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین. مثال دیتی ہوں, میں کہوں کہ شاہین پانی لا دیں, کیا آپ کا خیال ہے کہ شاہین بیٹھی رہیں گی؟ آپ کا نام لیتی ہوں میں, اور میں آپ کا نام لے کے کہہ دوں یا میں آپ میں سے یہ کہہ دوں کہ کوئی ایک مجھے پانی چاہیے, کیا آپ سارے اٹھ کے نہیں بھاگیں گے؟ بات سمجھیں گے نا. آپ اپنے بچوں سے کیا چاہتے ہیں؟ جو کہیں وہ کرے. اور آپ کے بیٹا پانی دینا, نہیں ماما اٹس ناٹ اے بگ ڈیل, پانی تو بڑی بات نہیں ہے, آپ نے کون سا مجھ سے دودھ مانگا تھا, جوس مانگا تھا. آپ کہیں گے نو دس از ناٹ دا میٹر, میٹر یہ کہ آئی ایم یور موم اینڈ آئی ٹولڈ یو ڈو سم تھنگ. تو جب میں نے تمہیں کچھ کہا تو تم بیٹھے رہے, ہماری بڑی سلینگ لینگویج میں کہتے ہیں ڈھیٹ بن کے بیٹھے رہے ہو. واللہ 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 آج ہم مسلمان اللہ کے بہت سارے حکموں پہ ڈھیٹ بن کے بیٹھے ہوئے ہیں اور ٹس سے مس نہیں ہوتے. کتنا برا لگتا ہے کوئی آپ کو کہے اور آپ اٹھے نا, میں آپ سے کوئی نا سبق سنائے اور آپ آگے سے نہ بولیں نا, نہ سنائیں تو میں انسلٹ فیل کروں گی. اس لیے کہتے ہیں جب ٹیچر کہتے ہیں نا کچھ سناؤ اور آگے سے نہ سنائیں تو اس کی بے عزتی کرتے ہیں آپ. ہم انسانوں کے ساتھ تو یہ باتیں سمجھتے ہیں, ابراہیم کو یہ بات صرف سمجھ آئی تھی اس قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین. ہم ہوتے تو سوچوں میں پڑے ہوتے, اچھا کروں نہ کروں. کتنی مثالیں ابراہیم کی زندگی میں, ہر بات پہ اوکے اللہ جی ٹھیک ہے جو آپ کے, ایون خواب کے اشاروں کو وہ مان رہے ہیں. ہم حقیقت کی باتوں کو کہتے نہیں, پھر ہم فتویٰ ڈھونڈنے جاتے ہیں کوئی بندہ اس کے اپوزٹ فتویٰ دے دے. نہیں نہیں یہ فرض نہیں, یہ سنت نہیں, یہ نفل, یہ مستحب, یہ obligatory, نان obligatory, یہ سنت موقعہ غیر موقع, یہ ساری ٹرمز مومن کو نہیں آتی. یہ فقہ جائیے کہیں اور سے پڑھیے, یہ ایمان کا سفر ہے. اور ایمان کی کوئی فقہ نہیں ہوتی, یاد رکھیں. فقہ دل کی اگر ہوگی نا تو اس میں توکل, الحب, البس ہوگا. ابھی کل پرسوں کا آخری لیکچر کلب سلیم کے پہ کیا نا ہم نے, سنی ہے اس کی ریکارڈنگ جنہوں نے نہیں سنی. اس میں 11 پوائنٹ دیے تھے کلب سلیم کون ہے, اور 3 علامتیں صرف بتائی تھیں کہ نہیں ہے آپ تو کیا ہے آپ کی زندگی میں, حالانکہ وہ بھی 8-9 تھی, ٹائم اتنی ملا. کیا پتہ چلا آپ کو؟ اللہ کا حکم سن کے ایپس اینڈ برڈس نہیں, پروز اینڈ کونس نہیں. یہ نہیں یہ کر لوں تو ثواب, بیٹے کی گردن پہ چھری چلا دی تو کیا فائدہ, نہ کروں گا تو کیا ہوگا, اللہ کتنا کو ناراض ہوگا, اچھا اگلے رمضان میں پھر اس کو منا لوں گا, پھر عمرہ کر کے آؤں گی تو اللہ رب راضی, وہ تو مان ہی جاتا ہے, اور مرنے سے پہلے توبہ تو کر ہی لوں گی. اٹس ناٹ دا میٹر آف ایمان. ایمان کا مسئلہ یہ ہے کہ اٹس مائی آنر, اللہ نے مجھے کہا آئی ایم ریڈی. اللہ جی آپ نے یہ نیکی میرے حصے میں ڈالی, بسم اللہ 100 دفعہ, آپ اس سے پوچھ, اس سے اجازت, آپ یہ کریں وہ کریں. یاد رکھیں یہ ایمان نہیں ہوتا. سچا ایمان جب اندر آتا ہے نا تو آپ اندر ہی اندر پک رہے ہوتے ہیں, ہلکی آنچ پہ. جیسے میں نے اپنے دل میں ایک جملہ رکھا ہوا ہے, سلو کوکر اسلحہ ثابت, سلو کوکنگ از دی بیسٹ کوکنگ. اپنی نانی دادی سے جا کے پوچھیں, مٹی کی ہانڈی میں پکاتے تھے, اس کھانے کا آج بھی لذت آتی ہوگی آپ کے باپ کو جو انہوں نے اپنی ماں کے ہاتھ سے کھایا ہوگا. آج پھر دوبارہ لوگ آگے مٹی کے برتنوں پہ سلو کوکنگ پہ, اس کا ٹیسٹ ہی اور ہوتا ہے. ایمان کا پروسیس سلولی سلولی اندر چلتا رہتا ہے. یہ تشریح مبشرہ جو ہم ان شاء اللہ نیکسٹ سیشن میں دیکھیں گے. اصل جو کمی ہے نا آج ہمارے اندر, ایمان کی کمی ہے. ظاہرداری بہت ہے, اور آج اگر اپنی نسلوں کو بچانا ہے تو اسلحہ ثابت. اس دل کی مٹی کو اس طریقے سے نرم کر دیجئے کہ ایک دفعہ اگر اندر ایمان چلا گیا تو ہٹے گا نہیں. ادھر ایک چھوٹی سی کومپل اور ایک درخت کی جڑ میں اتنی طاقت ہے کہ آپ کے گھر کی دیوار ہلا دے, تو آپ کے میرے ایمان میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ رشتہ داروں سے ذرا مختلف روش پہ چل سکے, شوہر کو ذرا سا ناراض کر سکیں, بیوی کو ذرا پیچھے ڈال دیں کہ بیگم آپ مجھے پیاری بہت ہیں پر اللہ کا حکم آپ سے زیادہ پیارا ہے. یہ سارا دن چلتے ہیں. اور اس پہ دیکھیں سورت توبہ میں 9 چیزیں جس میں کچھ رشتے اور کچھ بے جان چیزوں کو سامنے رکھ کے کیا کہا, احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ, کہ اگر یہ تمہیں گھر مال بیٹے اولادیں چیزیں اللہ اور اس کے رسول اور اس کے راستے کی جد و جہد سے زیادہ پیاری ہیں تو تیار ہو جاؤ, پھر اللہ اپنا امر لائے گا. اور لکھی مفسرین کہتے ہیں یہ اللہ کا امر, جہت جاتی اللہ امر امرہ کہ عذابہ, اللہ اپنے عذاب کا حکم, پھر وہ عذاب ایسے نہیں آتا, بجلیاں نہیں گرتی, کڑک نہیں آتی, یہ پھر غم پڑتے ہیں, یہ ڈپریشن اور سٹریس اور ان دیکھے غم. ہم نے تو آپ کے لیے بیٹا اتنا کچھ کیا, آپ کو کیا ہو گیا بیٹا, آپ کیوں بگڑ گئے, ہم تو بچپن سے آپ کو لے کر اسلام سکھا رہے تھے. اپنے آپ کو اللہ کے آگے لانا ہے, پھر آپ دیکھیں گے کہ جب اصل جمع ہوتی ہے نا, اصل ثابت ہوتی جائے گی, پھر ایمان توکل پھوٹے گا اس میں سے, پھر اس میں سے آگے بڑھتے بڑھتے آپ کی زندگی میں خیر آتی جائے گی. اور پھر اس کے بعد یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جڑیں تو ہیں, نئے پودے کی جڑیں بہت چھوٹی ہوتی ہیں, جیسے ہم بہت سارے پودوں کی جڑیں نکال لیتے ہیں نا, مولی گاجر, جب آپ اس کو پلک کرتے ہیں اسے زمین سے تو اس کی جڑ ساتھ آتی ہے نا, کمزور سی ہے, کیونکہ مولی بڑی ہے اوپر جڑ چھوٹی ہے. کئی تو جڑیں ہم کھاتے ہیں, آلو اور اسی سے شکر کندی, یہ جڑ ہے نا, وہ تو میٹھی ہے, لیکن آپ آم کے درخت کی جڑ نکال کر تو دکھائیے, نہیں نکلے گی, یہ فرق ہے. جب اسلحہ ثابت ہونا نا, پینیٹریٹڈ, ڈیپ روٹیڈ, اندر 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 اندر, اور جب ایمان باللہ آیا تو پھر توکل آئے گا, پھر ادیت باللہ رب بنائے گا, پھر اللہ سے پیار ہوگا, اللہ کے فیصلے اچھے ہوں گے, یہی ایمان ہے. آپ کو ایک پیپر بھی دیا گیا, ابھی اس کو اکٹھے ڈسکس کرتی ہوں, لیکن اندر کی پختگی باہر کے لیے آسانی کا ذریعہ ہوتی ہے. چلیے ہو گئی, کم ٹو نیکسٹ پوائنٹ. اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے, اسٹاک, تنا. شروع میں کچا سا تنا ہے, چند چیزوں کے تنے لکھیے, پودینے کا تنا ہم کھاتے ہیں الحمدللہ, بہت خوشبودار ہوتا ہے, دھنیے کا تنا کاٹ کے کھانے میں ڈال لیجیے, نو پرابلم ایٹ آل. اور کون سے تنے کھاتے ہیں جی ہم, پالک, اسپینچ, سرسوں کا ساگ, یہ سافٹ تنے ہیں, اس کو کیا کہتے ہیں عربی میں, پہلے پارے کا لہسن ہے, مم بقلیہ, بقل کیا کہتے ہیں, وہ سبزیاں جس کے تنے نازک ہوتے ہیں. چلیے اس تنے کو تو آپ نے کھا لیا, بٹ کیا آپ مالٹے کے درخت کے تنے کو کھا سکتے ہیں, آم کے درخت کا تنا کاٹ کے کھا سکتے ہیں, یہ فرق ہے. جو کچے تنے تھے نا ان کو ہم کھا گئے, لیکن جو مضبوط تنے اس کو نہیں کھا سکتے. ایمان کے بعد جو اگلی چیز ہماری زندگی میں آتی ہے نا, وہ عبادات ہے. یہ جو اسٹاک ہے یا تنا ہے, اس کو آپ کیا کہیں گے, 5 pillars of Islam, نماز, روزہ, حج, زکوٰۃ. اللہ سے پیار کا اظہار ان عبادات کی صورت میں ہوگا. زمین میں جڑیں ہیں اور کئی مہینوں سے جڑیں بنتی جا رہی ہیں اور اوپر تنا ہی نہیں نکل رہا, اٹس ناٹ پاسبل. اور تنا ہے لیکن مضبوط نہیں ہو رہا, اٹس ناٹ پاسبل. خود نماز پڑھنے کو دل کرتا ہے جب معرفت ہوتی ہے, وسجد واقترب. دن میں کئی بار ایک بندہ گرتا ہے سجدہ شکر میں کہ اللہ یہ کیسے ہو گیا, اللہ یہ آپ کو کس نے بتایا. بعض دفعہ بیوقوفی سے بندہ کہتا ہے اللہ آپ کو کس نے بتایا مجھے یہ چاہیے تھا, اللہ جی آپ کو کس نے کہا یہ میں نے مانگا تھا, تو پھر اللہ ہی کہتا ہے کہ مجھے اس نے بتایا جس نے تیرے دل میں ڈالا. وہ دلوں پہ نظر رکھتا ہے, علیم بذات الصدور. بلیف می کہ اگر آپ اپنے اور اپنی نسلوں اور اپنے ارد گرد والے جن کو آپ دعویٰ کریں ان کے دل کے اندر یہ سب ڈال دیں, تو انشاءاللہ آگے جا کر عبادات آسان ہوگی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بار بھی, ناٹ ونس, یہ کہنے کی نوبت آئی, صحابہ کو جمع کیا ہو, ایک بڑا اچھا سا فلائر چھپوایا ہو, ساری مسجدوں میں لگایا ہو, پھر اس کو واٹس ایپ اور فیس بک پہ وائرل کیا ہو, اور اس کا ٹاپک ہو نماز کیوں پڑھیں, پھر صحابہ آئے ہوں اور ان صحابہ کرام کو بٹھا کر کہا ہو کہ اللہ کے بندو نماز پڑھا کرو, اللہ کے بندو نماز نہیں پڑھو گے تو بخشے نہیں جاؤ گے. ایک مثال بھی نہیں ہے. وائے, جب کوئی حکم آتا تھا قرآن کی صورت میں, وحی جلی یا وحی خفی کہہ لیجئے اللہ دل میں ڈالتا تھا، ایک دفعہ اللہ کے نبی اپنے ارد گرد کے لوگوں کو بتا دیتے تھے کہ دس از حکم آف اللہ، دس از اسلام. عبداللہ بن ابئی جیسا کردار راس المنافقین، وہ بھی نمازیں پڑھتا تھا. اور ابو جہل جو مسلم نہیں ہوا، اس کا قول آج بھی لکھا ہوا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو سچا ہے جو تو کہتے، مجھے پتہ ہے سچ ہے، بٹ مجھے پتہ ہے ایک دفعہ میں نے کلمہ پڑھا تو مجھے بہت سارے کام کرنے پڑ جائیں گے، ہماری زبان میں نمازیں روزے حج زکوٰۃ اور یہ شراب کباب چھوڑنا پڑے گا، اور ابھی میں اس کے لیے تیار نہیں ہوں، آئی ایم ناٹ ریڈی فار دیٹ یٹ. تو ابو جہل کی جرت زیادہ تھی آج کے مسلمان کی؟ یہ مسلمز نہیں ہیں، بلیو می. قرآن سنت کے گلاسز لگا کر دیکھیے تو وی آر ناٹ ایکچولی مسلمز. یہ سارا کچھ ہم پڑھیں گے اگلے دنوں میں، اور آپ دیکھیں گے کہ شکر ہے اللہ کا کہ اللہ نے آنکھیں کھول دی اس دنیا میں. یہ نماز روزہ لازمی ہے. آپ ایکسٹرا کام کریں نہ کریں، آپ کی مرضی ہے، آپ کو کوئی نہیں کہتا. آپ تہجدیں پڑھیں، آپ جا کے عمرے کریں، حاجیوں کو کھانا کھلائیں، نیور، بٹ نماز پڑھنی پڑے. ہے یہ علی الصلاح، ہے یہ علی الفلاح کی آواز میں یو نیڈ ٹو ریپ اپ یور تھنگس. گاڑی کی چابی ہٹانی پڑے گی، چولہا ہلکا کرنا پڑے گا، جو مرضی ہو جائے، بس آپ کو قوم للہ ہی قانتین پہ عمل کرنا پڑے گا. یہ ہے اسلام. اور یہ تھے امبیسیڈرس. آپ ابھی سنیں گے نیکسٹ سیشن میں صحابہ کرام میں اور ہم میں بس یہ فرق تھا، دیٹس اٹ. ہماری طرح ان کا گوشت، ہماری طرح ہڈی پسلی، بچے، اولاد، شوہر، بیوی، سب میں جکڑے ہوئے تھے، بٹ اسلوحہ ثابت، ایمان کی اصل ثابت ہو چکی تھی. آپ لوگ آگے آ سکتے ہیں، ادھر یہ چیئرس ہیں سسٹرس، آپ آ سکتے ہیں، بیٹھے رہے. اب کیا ہوا، جب ایمان کی جڑیں اندر آتی ہیں تو پھر صحابہ جیسے کارنامے انجام دینے پڑتے ہیں، پھر سوال سن کے بیٹھے نہیں رہتے کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. تم ہرگز نیکی کو پہنچ ہی نہیں سکتے تب تک جب تک تم اپنی من پسند چیز نہ اللہ کے راستے میں دو. میرے حال میں سب سے مشکل حکم یہ ہے پورے قرآن کا، بات سمجھ رہے؟ اس میں کس کی قربانی ہے؟ مما تحبون. جن صحابہ کو یہ آیت ود آؤٹ اینی انٹرپریٹیشن سمجھ آ گئی، مان لیجیے اسلوحہ ثابت. ہم کہتے ہیں ہاں ہاں، جوکس بناتے ہیں، لوگ کہتے ہیں ہاں مجھے اپنی ساس بڑی پیاری ہے، قربان کر دو اس کو جا کے، نعوذ باللہ، دھوکہ کرتے ہیں خود سے بھی. جب آپ کو اللہ کا ہر حکم ایسے لگے اٹس اونلی فار می، یعنی اپنے اوپر لے کر سوچئے، اگر قرآن پاک صرف اور صرف میرے لیے نازل ہوتا تو میں اس کا جواب کیسے دیتی؟ ہم سوچتے ہیں اس میں ٹیم ورک کا ہے، اس ٹیم ورک ان کو کوئی کام تم کر لو. آپ لوگ بیٹھے رہے پلیز، ایڈمنس دیکھیں گے. آپ کہتے ہیں کچھ میں کر لوں، مثلا آپ نے ایک پروگرام ارینج کیا، گھر میں دعوت تھی، آپ کہتے ہیں کہ بیٹی سے کہتے ہیں آپ کلیننگ کی ذمہ داری لے لیں، ہسبینڈ کو کہیں گے آپ باہر سے ذرا گارڈن صاف کرا دیں، میں کوکنگ کر لیتی ہوں، بیٹے کو کہیں گے باہر سے سامان لاؤ. اینڈ آف دا ڈے کیا ہوا؟ ایک بہت اچھی دعوت بن گئی، سب کہیں گے بہت اچھا. اس میں یہ نہیں ہو رہا ہوتا پھر کہ دعوت میں کس نے کیا کام کیا، ایک سے چھکا لگاتا ہے پوری ٹیم کی فتح ہوتی ہے نا. یاد رکھیے دنیاوی کاموں میں ہوگا یہ، بٹ دین کے کام میں اکیلے اکیلے، دیر از نو ٹیم ورک ان گڈ ڈیڈس. کہ کچھ میں نے کر لیا کچھ آپ کہتے ہیں، ہاں میں سین سیکھ رہی ہوں نا، عمل کوئی اور کر لے، میں پڑھا رہی ہوں نا تو عمل آپ کر لے، میں پڑھا نہیں رہی بھلا آپ میں عمل بھی کروں، یہ نہیں ہوگا. پورے دین پہ ادخلوا فی السلم کافا. اور جب کوئی امت افتومنون بباد الکتاب وتکفرون بباد پہ عمل کرتی ہے نا، تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ کچھ کیا اور کچھ نہ کیا دونوں برابر ہو جاتے ہیں، واپس آ جائیں، تنا مضبوط ہے، نماز روزہ ہوگا. اور یہ ہمیں انرجی دیتا ہے سٹینڈ کرنے میں اللہ کے لیے. دن میں پانچ بار آپ ایک مجرم اور قیدی بن کے کھڑے ہیں، ایاک نعبد ویاک نستعین بول رہے ہیں، تو کیا ہو نہیں سکتا کہ اس کے بعد پھر آپ اللہ کی مرضی نہ مانیں؟ از اٹ پاسبل؟ پانچ دفعہ آپ نے روزے محشر میں یعنی جس کو آپ کہہ لیں کہ قیامت کے دن کے قیام کو ریہرسل میں کر لیا، کیا قیامت کے دن کو گھبراہٹ ہوگی؟ نہیں، آمنون ہوں گے. تو پھر کیا ہوا کہ پھر آپ کی روٹ صحیح ہو گئی، روٹ کے بعد تنا ٹھیک ہو گیا، اس کے بعد برانچز، شاخیں. میں اکثر درختوں کو دیکھتی ہوں آتے جاتے، کتنی شاخیں، اور بعض دفعہ درخت ادھر ہے لیکن شاخیں دوسرے درخت میں اوپر ایسے بڑی پیار سے جھلی ملی ہیں. یہ ہمارے معاملات ہیں، ڈیلنگس ود ادر. یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں زندگی میں ایک دوسرے کو دینی ہوتی ہے، بینگ اے نیبر، بینگ اے مدر، ماں ہونے کے، باپ ہونے کے ناطے، جس کو اپنی زبان میں آپ حقوق العباد کہیں گے. ٹھیک ہے، تو اس کے لیے درختوں سے مثال ملی کہ جب ہمارا، واپس دیکھیے ذرا، گو تھرو کیجیے، اصل مضبوط تھی، تعلق باللہ مضبوط تھا، تو عبادات اچھی ہو گئی. انشاءاللہ بہت نائس ہو جائیں گی عبادات، دن بہ دن اچھی ہوں گی. ٹائم لگتا ہے بٹ اٹ ول بی. آپ نماز نہیں پڑھتے، بس پڑھنی شروع کرتے ہیں، چھوڑ دیجئے فوکس کو، بھی ہو رہا نہیں، ہو رہا دل لگ رہا نہیں، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے نہیں، خوشی ہو، اٹس اوکے، ڈو اٹ، اسٹارٹ فرام بگننگ. کوئی بچے کہتے ہیں ماما مزہ تو آتا نہیں، بیٹا پھر بھی پڑھو، قرآن سمجھ تو نہیں آتا پھر بھی پڑھو. کوئی لوگ کہتے ہیں نا خالی قرآن پڑھنے سے کیا ہوگا، ہوگا، کیوں نہیں ہوگا، آپ کو قرآن سن کر مزہ آئے گا، پھر آہستہ آہستہ ٹیسٹ بنتا ہے. دیکھیے ٹیسٹ ڈیولپ ہوتے ہوئے ٹائم لگتا ہے. آپ اس ملک میں آئے، کوئی نئی چیز آپ کو آفر کی، آپ نہیں کھاتے، ایک آدھ دفعہ دوستوں نے زبردستی منہ میں ڈال دی، اب آپ شوق سے کھاتے بناتے بھی ہیں. اٹ ول ٹیک ٹائم، ایمان کا ٹیسٹ ڈیولپ ہوتے مزہ آتا ہے. میں ایک مثال دے دیتی ہوں، اس پہ آپ نوٹ کر لیں. مجھے یقین ہے پاکستان، انڈیا اور بنگلہ دیش کے لوگوں کے لیے تو یہ بالکل بھی فیزیبل نہیں ہے بات. دنیا کے کسی خطے کے شخص کو جس نے کبھی آم نہ کھایا ہو، آپ اس کو کہتے ہیں کہ آم بڑا مزے کا ہوتا ہے، یو شوڈ ٹرائی اٹ، کہتے ہیں میں نہیں کھاتا، اتنا بڑا پتھر سا اور سبز نہیں، پیلا آم کھاؤ. اب آپ اس کو جو بھی کہیں گے وہ ڈرے گا، اس کو آم اچھے، اس کو پتہ ہی نہیں آم کیسا ہوتا ہے، آپ کہتے ارے کھا کے تو دیکھو کیسا ہے. خیر اس کو آپ کی بات یاد رہ گئی، کسی جگہ سے گزرا تو وہاں ہی آم کا درخت تھا، کہا چلو میں ٹرائی کرتا ہوں. اب وہ آم کے درخت سے کچا آم اتار لے، جب بھی پورا پکا بھی نہیں ہے، سافٹ بھی نہیں ہوا، اور وہ کہتا لو لیٹ می ٹرائی اٹ، جب اس کو کھائے گا تو اس کی زبان کو کیا لگے گا، یہ ہے آم، اس کی تعریفیں کر رہی تھیں آم، استغفر اللہ، لا حول ولا قوۃ الا باللہ، اعوذ باللہ پڑھیں گے تو آپ نکل جائیں گے. اچھا اب کبھی آپ کے پاس آئیں، یعنی کینڈی بھی ہے بڑی، آپ کو بتا دوں بچوں کی ہر کینڈی نہ کھایا کریں. ایک بچے نے ہمارے ساتھ فن بنایا، ایک دفعہ سر کے ساتھ بنایا، پھر سر نے میرا بنایا، کہیں گے تو وہ بچے نے ان کو کینڈی آفر کی، چھوٹی سی تھی کینڈی، سر پلیز ٹیک، انہوں نے کہو کہ تھینک رکھ، نہیں نہیں ایٹ اٹ، ایٹ اٹ ان فرنٹ آف می. انہوں نے اس کا دل رکھا کہ وہ ہاں اتنی کھٹی میں ہے نہیں، انہوں نے کہا گیو می ون مور. ایک پھر سیم پریکٹس انہوں نے میرے ساتھ کی، آج تک میں نے ان کو معاف نہیں کیا ہوا کہ آپ نے اس وقت میرے ساتھ کیا بدلہ لیا تھا. لیکن کچھ چیزیں ہوتی ہیں نا، اب جس نے کھٹا آم چکھا، میرا سوال ہے آپ سے، کیا جو آپ نے اس کو آم کے گن گائے تھے، آم کی تعریفیں کی تھی، وہ آپ کی ان باتوں پہ یقین کرے گا؟ نہیں کرے گا. بٹ آپ بھی سچے تھے، سچا وہ بھی ہے، فرق کس بات کا ہے؟ آپ اس کو سمجھائیں گے مائی ڈیئر پلیز، پرابلم یہ ہوئی کہ آپ نے کچا آم توڑ لیا. اگر آپ تھوڑا ویٹ کر کے پکا ہوا آم کھاتے تو پھر آپ کو میری بات سمجھ آتی. سیم لائک مینگوز، یہ بھی ایک ٹپ ہے، ایک سلائڈ بنا دیں، ایمان گروز لائک مینگو ٹری. کھٹی امبی کیری، ماشاءاللہ حیدرآبادی گجراتی سے معذرت کے ساتھ، کھٹی دال، کھٹے آلو، کھٹی بریانی، کھٹی میٹھی بریانی، املی بھی ڈالتے ہیں، چینی بھی ڈالتے ہیں، کرتے ہیں نا، کھٹا ہوتا ہے، شروع میں ایمان کھٹا ہوتا ہے. یاد رکھیں ضروری نہیں ہر نیکی کر کے آپ کو مزہ آئے، جہاد جیسی نیکی پہ کام مزہ آتا ہے، جب جسم پہ چھالے پڑ جاتے ہیں چل چل کے، دھوپ میں گرمی میں پاؤں چھل جاتے ہیں، بٹ آفٹر آل جب تم شہید ہو گئے تو تمہیں چونٹی جتنی تکلیف ہوگی. تو ایمان کے جو اسٹیپس ہوتے ہیں نا، یہ کھٹے ہوتے ہیں، شروع میں کڑوے پھر کھٹے، بٹ کیپ اٹ آن دا ٹری. جب درخت کے ساتھ لگا رہتا ہے نا آم، بہت میٹھا ہوتا ہے. اب یہاں آپ سب کے لیے ایک بہت گہرا میسیج ہے، میں کلیئر بات کروں گی اس کورس میں، مجھے وہ نہیں کہ میں کہوں سمجھ جائیں گے، کیونکہ میں آپ کو اتنا سمجھدار چلے آپ نیکسٹ ٹائم مجھے نہیں بلائیں گے. ماں کو اپنے بچوں کا پتہ ہوتا ہے نا، تو اسٹوڈنٹس کا بھی پتہ ہوتا ہے، تو سیدھی بات اچھی ہے، سیدھی سی بات صحیح ہوتی ہے نا. اگر میں آپ کو یہاں یہ کہہ دوں کہ آپ یہ جو بات آپ کہنے لگی یہ صرف آپ سبیر الجنہ اسٹوڈنٹس کے لیے ہے، تو یہ غلط نہیں ہوگا. اور وہ کیا ہے کہ آم کو جب درخت کے ساتھ پکاتے ہیں نا، اس کا ٹیسٹ ہی کوئی اور ہے. یہ ہے پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ، جو آم درخت کے ساتھ لگا رہتا ہے آفٹر آل وہ میٹھا ہو جاتا ہے. और जो आम आंधियों में गिरे हुए कच्चे घिरे हुए जल्दी जल्दी के लिए शौक में निकालें, वो पैल डालना कहते थे हमारे मुल्क में, कुछ एटमॉस्फेयर ऐसा सेट करके उसको दबा देते हैं पेटियों में, वो शाम का वो टेस्ट नहीं होता। वो स्टूडेंट जो इल्म के सोर्स के साथ जुड़ा रहे और जिस जगह को अल्लाह ने उसकी तूर और उसकी उसकी हिरा बना दिया ना, उसके साथ जुड़ा रहता है ना, कि एक स्टेप मैंने ले लिया, अब दूसरा भी लेना, तीसरा भी लेना, वो ज़रूर आखिर में मीठा होता है और इंसानियत को टेस्ट देता है। और आप आम को एक दरख्त से उतार लें, फिर जाके दूसरे पे टेप से जोड़ दें, फिर वहाँ से उतार के तीसरे किसी दरख्त में जाके एल्फी से जोड़ दें, आप जो मर्ज़ी कर दें उस आम के अंदर मिठास नहीं आएगी। ये है उन लोगों की मिसाल जो रंग रंग के नाम पर अपने ईमान को बढ़ाते हैं। पहले एक कंस्टडी में रहें तो सही, ये टेस्ट चेंज करना होता है, ये सिर्फ शुगल होता है कि हम ये भी सीख रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, उधर भी जा रहे हैं, जाइए, नो, कोई नहीं रोकता आपको, बट पे बस्ता रह शजर से उम्मीदें बहार रख। तो आप इस ईमान का जो दरख्त आपके दिलों में अब लगना लग चुका है, कुछ लग रहा है, इसके साथ अपने आप को जोड़े रखें तो आगे देखिए एंड पे रूट टू फ्रूट पहुँचेंगे। अब क्या हुआ, शाखें भी हो गई, इसको हम पढ़ेंगे, इस पूरे कोर्स में हम बहुत सारी शाखें पढ़ेंगे। बस आज नमाज का टॉपिक किया तो आपने कोई 10 किस्म की तो नमाज सीखनी है इस एम्बेसडर्स ऑफ इस्लाम में इंशाल्लाह, और बहुत कुछ। बहरहाल आगे चलिए, आखिरी चीज़, दरख्त में शाखों के बाद क्या होता है, पत्ते। पत्ते क्या करते हैं, ऑक्सीजन देते हैं सोसाइटी को और कार्बन एब्जॉर्ब करते हैं। आप सोसाइटी के लिए ऑक्सीजन गैस बनेंगे। जहाँ एक सच्चा मोमिन बैठ जाता है ना, वहाँ के नसीब जाग जाते हैं, वहाँ के लोगों को सुख का सांस मिलता है। ये है कुन तुम खैरा उम्मत अखरजत लिन्नास। ये कैसे हो सकता है कि एक बंदा किसी सोसाइटी में हो और उसकी खुशबू ना आए। ये थे एम्बेसडर्स ऑफ इस्लाम, सहाबा किराम दुनिया के जिन खित्तों से गुजरे वहाँ अपनी खुशबू देकर चले गए। इनकी वजह से, वो कहते हैं ना, दो नीम इनकी ठोकर से सहरा और दरिया। आज एंड पे एक पोइम भी शेयर करूंगी इंशाल्लाह कि सहाबा की शान में किसी ने सच कहा। तो क्या हुआ कि पत्ते क्या है आपकी ऑक्सीजन। पहले अब वापस आए माइंड पे, अभी आपको पिक्चर भी दिखानी है, खोल लीजिए, हम ब्रेक से पहले ही दिखा देंगे उसको। पहले आप जड़ बने, नंबर एक सेल्फ इम्प्रूवमेंट, पर्सनल ग्रूमिंग, करेक्टर बिल्डिंग आपके अंदर। जैसे बच्चा माँ के पेट में 9 माह क्यों रखा जाता है, कभी सोचा आपने? जो प्रेग्नेंट औरतें उनसे कोई पूछे, वो कहती है 9 दिन में बच्चा डिलीवर हो जाए। अल्लाह ने कहा वहनन अला वहन, है ना, कमजोरियों पे कमजोरियां, लेकिन अल्लाह माँ के पेट में 9 महीने एक बच्चे को क्यों रखता है, ताकि बाद में उस 10-12 किलो के बच्चे का वजन उठा सके, जब उठा उठा के फिरती है उसको। अगर वो कमजोर सी नाजुक सी बच्ची है जिसने एक प्लेट ग्लास नहीं उठाया होता शादी से पहले, 9 माह की इन मुश्किल मराहल से ना गुजारी जाए और 8-9 पाउंड का बच्चा ना पेट में रखे, बाद में वो बच्चे की सारे प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं कर सकती। तो इसी तरह से पहले अंदर आपके अंदर के अंदर स्ट्रेंथ होगी, बाद की चीजें बहुत आसान हो जाएंगी। अब पत्ते आ गए, पहले क्या थे, तने, आप खुद ग्रो हुए, फिर सेकंड स्टेज आपका स्टॉक, आपका तना, ये आपका लोगों को दिखेगा, नमाजों में आप दिखेंगे, रोजे में आप रोजा रखेंगे लोगों के साथ। पहली चीजें नहीं दिखती, जड़ छुपी हुई है, नीयत भी छुपी हुई है, ईमान भी छुपा होता है, बट ये अमल से दिखता है। ये है इन्नल्लज़ीना आमनू वामिलुस सालिहात। फिर उसके बाद क्या होगा कि आप लोगों में नेक मशहूर होंगे, लोग कहेंगे आपने कुरान पढ़ना शुरू कर दिया, आप में चेंज आ गई, घर वाले कहेंगे माशाल्लाह आप अच्छी हो गई, नमाज पढ़ रही, ये आपका तना है। फिर उसके बाद शाखें, जिस जिसका आपसे वास्ता पड़ेगा वो इस बात की गवाही देगा कि शी इज़ वेरी गुड, मेरे बहू जैसी कोई नहीं, पहले ऐसी नहीं थी अब अच्छी हो गई, पहले ऐसा था, यानी फिर लोग हमारे मामलात की गवाहियां देते हैं। यहां तक तो 3 स्टेप हुए ना, पत्तों को देख लेना, तो उसका नेक्स्ट स्टेप क्या है, क्या अब आप दूसरों को भी कुछ देने के शौक में। फर्स्ट थिंग, वट एवर द ट्री इज गिविंग, एवरी ट्रीज, हर दरख्त जो चीज़ देता है वो ऑक्सीजन तो देता है। आपने कभी सोचा, मैं बहुत सोचा करती थी शुरू से ही, कि कुछ दरख्तों पे फल तो लगता ही नहीं है, ऐसे ही है ना, तो फिर उनका फायदा क्या, काट दो, छांव देते हैं, शाबाश, और क्या देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं। तो फर्स्ट लेवल आपका क्या है, ये अभी क्या है, कोर्स पूरा करने के बाद, लेकिन इसमें आप बड़ी गलतियां कर रहे हैं, इसीलिए आपकी दोस्तें आपकी बात नहीं मानती। मैं कैसे, वो आएंगी नहीं, वो उनको शौक ही नहीं, वो मसरूफ पड़ी हैं। आप पत्ते बन के ऑक्सीजन देना चाह रहे हैं लेकिन लोग लेना नहीं चाह रहे, ये कैसे हो सकता है कि किसी का सांस उखड़ रहा हो और आप उसको ऑक्सीजन मास्क ऑफर करे बना ले? क्या आज इंसानियत के सांस नहीं उखड़े हुए? डिप्रेशन, दुख, गम कितने हैं? आपको इस कुरान से पता चल गया सारे बीमारी, सारी बीमारियों का इलाज इसमें है, तो अब आप उनको ऑफर करते हैं, वो ले नहीं पा रहे। वजह क्या है? अभी आपकी ट्रेनिंग नहीं हुई, अभी आपको हिकमत नहीं आई। आप उनको ये क्यों कहते हैं कि आप आए? फिर वो कहते हैं आप तुम हर वक्त एक ही बात कहती हो, मुझसे भी किसी ने कहा। फिर फ्रेंड्स ये सोचती हैं हम हर वक्त एक ही बात करते हैं, जैसे मुझे किसी ने कहा मैं हर वक्त अपनी दोस्तों को कहती हूँ कुरान क्लास में आओ, अपनी क्लास में आओ, मैं हर वक्त अपने बच्चों को कहती हूँ। तो मैंने कहा माजरत के साथ, मैं तो हर वक्त कभी ना कहूँ अपने बच्चों को, एक दफ़ा कहूँगी, नहीं मानेंगे फिर मैं बाद में उनसे पूछूंगी कि भाई तुम्हें मेरी माँ की बात नहीं समझ आती, मैं नहीं हर वक्त कहूँगी, तो फिर क्या करें? मैंने कहा आपने खाई मुगल से बिरयानी, खुशबू, टेस्ट, रंग अच्छा, और आपने पहले तो तस्वीर भेज दी उसी वक्त स्नैपचैट करके, फिर फेसबुक पे पतीर प्लेट डाल दी। अब देखिएगा आने वाले आईफोन्स और इन फोन्स में खुशबू भी आया करेगी, और बड़ा कुछ होना है अभी आपके मेरे से। उन्होंने अपने सारे फोन बेचने हैं, इसी पे नहीं छोड़ना उन्होंने। अब क्या हुआ, शेयर कीजिए, इतना मज़े का खाया, फिर आपको नहीं कहना पड़ेगा कब खुलता है रेस्टोरेंट, कहाँ है, वो पूछेंगे। अपनी फीलिंग्स दीजिए, अपना अपना टेस्ट तो बताइए, अपनी ज़िंदगी का सुकून बताएं। आपको देख कर वो कहें तुम इतनी चेंज कैसे हो गई, तुम इतनी सेटिस्फाइड क्यों हो, तुम अब इतनी खुश क्यों रहती हो, तुम अब बैक बाइटिंग में नहीं शामिल होती। आप कहते हैं यू यू कैन टेस्ट इट, कमन सैम्पल रखे में आ जाइए, ले लीजिए, टेस्टर्स तो हर जगह ही होते हैं। आखिरी चीज़ है फल, हर दरख्त का फल नहीं होता। अब बड़ी गौर से सुनिएगा ये जुमले, आप सब इन सारे मराहल से गुजर कर आगे से आगे जाएंगे इंशाल्लाह। कुछ तो सेल्फ ग्रूमिंग पे रुक जाते हैं, कुछ का तो बस दिल का ईमान बहुत है जी, पता लग गया अल्लाह सबसे बड़ा है, वो तो अपनी मौत आप मर जाएंगे। जिस दरख्त की जड़ें ऊपर ही ना गईं तो वो दरख्त तो नहीं बनेगा ना। कुछ ही इबादात तक ठीक हो जाएंगे इस कोर्स के बाद, अल्हम्दुलिल्लाह नमाज रोज़ा अच्छा हो गया। आप सोच लीजिए, आप तसव्वुर में लाएं, ये भी एक्टिविटी बना के दें मुझे, क्योंकि ये मिसाल मैंने बहुत दफ़ा दी, अब लगता है कि वो एक्टिविटी बन जाएगी इंशाल्लाह। इमेजिन कीजिए कि जड़ें हैं, दैट्स इट, कोई उस जगह से गुजरे और वाकई खोद के दिखा दी जाए यहाँ जड़े हैं, आप उसको बोलें ये दरख्त है, कोई मानेगा? नहीं मानेगा। चलिए, तना था, स्टेम था, ये वो लोग हैं जिनका कुरान से ताल्लुक़ होता है, तो उसके बाद अपनी नमाज़, रोज़ा, इबादत अच्छी होती है। इससे तीसरा दर्जा आपका क्या, कि आपके मामलात अच्छे होंगे, डीलिंग्स विद अदर, ताल्लुक़ बिल्ला भी अच्छा रहा, ताल्लुक़ बिन नास भी अच्छा रहा, हकूकुल्ला भी पूरे कर रहे हैं, हकूकुल इबाद भी पूरे करेंगे, कुछ यहाँ रुक जाएंगे आप में से, अल्हम्दुलिल्लाह चले असाबुल जमीन तो बन गए, बट कुछ लोग ऑक्सीजन बनेंगे। कैसे? पत्ते। ये हैं वो छोटी छोटी कोशिशें जो हम अपनी कम्युनिटीज़ में दीन की बात करने की, लोगों को कॉलिंग टुवर्ड्स इस्लाम, टुवर्ड्स इस कुरान, यानी कह लीजिए कि हम सोर्स बन जाते हैं बीच में, एक ऐसा गैर रस्मी तरीके का, बट सबसे ब्लेस्ड और खुशकिस्मत लोग आप में से वो होंगे जो इस दुनिया से जाने से पहले पहले इंसानियत को फ्रूट्स देकर जाएंगे। ये हैं उलमा, ये हैं मुबल्लिगीन, ये हैं अंसारुल्ला। मत सोचिए कि आप अंसारुल्ला बन के फ्रूट्स नहीं दे रहे, वल्लाह ही अगर इस वक्त कई लोग पीछे बैकग्राउंड पे ना हो तो ये मेरी बातें आप तक पहुंचेंगी भी नहीं। लोग कहते उस्ताद बनना बड़ी नेकी है, अस्तग़फिरुल्लाह, इतना खतरा, इतना खौफनाक है, अल्लाह ने आपके लिए लिखा हुआ तो बन तो जाएंगे, बनना तो पड़ेगा, ये तो नहीं मैं कह रही आपने नहीं बनना, बट आप अपनी हिम्मत हार रहे हैं, हाय इतना ऊपर देखना है, इतने 100 मंजिलें तय कर, नहीं, टेक इट, 10 तो कीजिए, चले 20वीं पे तो आइए, 30th पे तो आइए, एक दिन आएगा 100 पे भी आएंगे। आप में से, मेरे में से हर एक मुफ्ती आजम नहीं बनेगा। फ्रूट क्या है? अब आप मेरी बात नहीं सुन रहे, स्क्रीन को देख रहे हैं, यही मसला है हमारा, हम छोटी सी चीज़ पे डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, नमाज टूट जाती है जब नमाज में इधर उधर देखे, एक अच्छी बात सुनते वक्त एक अच्छी चीज़ देखने लगे, फोकस टूट गया। ये दुनिया में हमारे साथ होता है, इस कमरे में बैठते हमें बहुत इजी लगता है, यहाँ से बाहर जाके ज़रा सा मुश्किल, गाड़ी में बैठ के आधा घर जाके भूल ही जाता है किधर चले गए, बी फोकस्ड। दरख्त हमेशा ऊपर जाता है, और ऊपर कौन है? अल्लाह की ज़ात। जब हम फोकस्ड होते हैं, हमारा किबला दुरुस्त रहता है, तो हम ग्रो करते हैं। नीचे से दरख्त को जोड़े रखिए ज़मीन में, ऊपर बढ़ते जाएंगे, दिन ब दिन एक वक्त आएगा कि आप फ्रूट्स ऑफ ईमान दुनिया को बांटेंगे। आज जितने लोग कार्य खैर में हिस्सा ले रहे हैं, लोगों को अच्छी बातों में, और इवन और भी अच्छे काम, सिर्फ कुरान पढ़ना पढ़ाना नहीं, प्रैक्टिकल हेल्प करते हैं उनकी, उनके प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, काउंसलिंग्स करते हैं, टूटते हुए घरों को बचाते हैं, बिगड़ी हुई औलादों को बचाते हैं, ये सब फ्रूट्स ऑफ ईमान है। तो नाउ यू नीड टू डिसाइड, आप अपने लिए क्या लेवल रखेंगी? सिर्फ अपनी इसलाह तो जड़ें, इजहार नहीं, ख़त्म हो जाएंगी जड़ें। नमाज रोज़ा आपका सही नहीं हुआ ना अभी तक, आगे जाके नहीं होगा, तो सॉरी टू से दैट, अंदर भी नहीं आएगा ईमान। वो दिन एक ऐसा रंग ऊपर चढ़ा होता है, जितनी तेज़ी से आता है उतनी तेज़ी से चला जाता है। एक ही तरीका है, पेवस्ता रह शजर से उम्मीद बाहर, नीचे से सोर्स मिलता रहे, ऊपर से हवा मिलती है ना, ऑक्सीजन देते हैं, रोशनी लेते हैं, क्लोरोफिल पत्तों में है, सब कुछ जुबान आती है, आप इर्द गिर्द से ले, जब तक मज़ीद नहीं लेंगे दे नहीं सकेंगे। दरख्त को पानी देना छोड़ दीजिए, मुरझा जाएगा, खाद डालना या नीचे मिट्टी से निकाल दीजिए, सब छूट जाएगा। तो एक नेचुरल ग्रोथ यही है कि आप एक तनावर दरख्त बने। अपने लिए दुआ करें, अल्लाह मुझे इस्लाम का दरख्त बना दे, ट्री ऑफ इस्लाम मुझे बना दे। ये एक पिक्चर है, ज़रा इसको साथ ही शेयर करते हैं, आप इसके ऊपर नज़र डालें। अब आप इसको देखेंगे, अब आप कुछ और नहीं करेंगे, इसको देखेंगे। बस ये सीखना है हम सब ने अपनी ज़िंदगी में अल्लाह के हुक्म के मामले में। इस प्रेजेंटेशन का नाम है इस्लाम ए टू जी। ए पहले आता है कि जी पहले आता है? बी पहले आता है कि वाई पहले आता है? बस स्टेप्स हैं। अल्लाह के नबी सल्लम ने, अल्लाह ताला ने कुरान पाक में क्या फरमाया, सूरत मायदा आयत 3, सूरत कौन सी है, नंबर क्या सूरत का, 5। अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम नेमती व रदीतु लकुम अल इस्लाम दीना। आज हमने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया और तुम पर अपनी नेमतें पूरी कर दी और तुम्हारे लिए इस्लाम को पसंद किया। अल्हम्दुलिल्लाह, कुरान पढ़कर हमें ये आयत तो समझ आ गई कि इस्लाम इज़ अ कंप्लीट वे ऑफ लिविंग। नेक्स्ट स्लाइड पे जाकर देखिए शुरू में क्या होता है। ये देखिए इसको माउस के साथ, जो मैं बोलूँ ना उसको बोले, बीज किधर लगा हुआ है, ये छोटा सा बीज है, सीड आपको दिख भी नहीं रहा होगा अच्छी तरह से दूर से, ये बीज है अल्लाह की मोहब्बत। इधर लेफ्ट पे चलिए, ज़मीन क्या है, बंदा है मोमिन का दिल। ऊपर से ये वाटरिंग क्या हो रही है, पानी दिया जा रहा है, वही है इलाही का। ये जो आपने कुरान अपने सीनों में डाला है ना, ये वही थी, वही का पानी था। कितनी दफ़ा अल्लाह ने इसको कहा अंजल नमान मुबारकन, ये बरकत वाला पानी है। तो इल्म और हिदायत का बीज मिला, अब क्या हुआ, आपके दिल के अंदर ये बीज छुपा दिया गया, नज़र नहीं आया किसी को, लेकिन था। नेक्स्ट स्लाइड पे चल के देखते हैं अब क्या हुआ, ये बीज निकलना चाहता है। यहाँ देखिए सबसे पहले जड़ें बनी हैं और जड़ें हैं अकीदा, इसको ताल्लुक बिल्ला भी कहते हैं। पहली सूरत में ये ताल्लुक बिल्ला होता है। अभी इंशाल्लाह ये मैं आपको ये प्रेजेंटेशन जो है ना एक्सप्लेन करूँगी, तो इसकी मज़ीद डिस्क्रिप्शन उसके साथ हम लेंगे, ठीक है। फिर ताल्लुक पर रसूल, रसूल का मुकाम समझ आता है ज़िंदगी में, हु वाज ही, वट ही हैज़ डन फॉर अस, क्या किया उन्होंने, कौन थे, लक़द काना लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। तीसरी जड़ जो होती है ना, ये ईमान बिल आखिरा की होती है, आपको अपनी आखरत का यकीन आ जाता है। आप देख रहे हैं जड़ें भी छोटी छोटी हैं, ये पतला सा पौधा, कच्ची सी डंडी निकली, पत्ते हैं ऊपर पुदीने के, कई लोग तो इधर ही तोड़ लेते हैं। जब हम कच्चे होते हैं ना तो लोग हमें तोड़ने की कोशिशों में कामयाब हो जाते हैं। आपने मैंने वो दरख्त बनना है जिसको कोई लालच, कोई तरगीब या कोई तरहीब, कोई खौफ अल्लाह के रास्ते से ना हटाए। ये तो सारी मक्का वालों को ख़रीदने की कोशिश थी। मुसलमान सहाबा का ईमान क्यों इतना पुख्ता है, क्योंकि उनको हर तरह के हालात में डालकर तोड़ना चाहा, नहीं तोड़ा। इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू, पौधे को बाहर निकलने के बाद मुनासिब माहौल की ज़रूरत होती है। ईमान नेकियों के माहौल में फलता फूलता है। इट्स ट्रू, अगर आपके वालिद एक आलिम हैं, आपकी वालदा माशाल्लाह कुरान से जुड़ी हुई हैं, तो आपके लिए 10-12 साल की उम्र में कोई नेकी करना बहुत आसान था, उस बच्चे या बच्ची की निस्बत जिसके माँ बाप खुद नमाज भी नहीं पढ़ते। तो ये हमारे ऊपर एक प्लस अल्लाह की पॉइंट होता है। किसी को माहौल अच्छा मिल जाता है, किसी को नहीं। बस लोग क्या कहते हैं, आपने नेकी का काम क्यों नहीं करना, आपके तो हस्बैंड ही बड़े कोऑपरेटिव हैं, और आप क्यों ना करें, आपका तो सारा ख़ानदान इसमें लगा हुआ है। तो इसका जवाब इधर लिखिए, इट टेक्स टाइम, इट टेक्स टाइम। आपके हस्बैंड आपके मुवाफिक बनेंगे, आपके घर वाले बनेंगे, आप पहले अपने अंदर तो मजबूती पैदा कीजिए। और यकीन करें, एक क्रेडिट के तौर पर, यानी मैं हमेशा ही बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, मेरे पर ये बात भी की जाती है कि आप हस्बैंड्स का बहुत साथ देती हैं, वाइफ्स को कम और हस्बैंड्स को ज़्यादा सपोर्ट करती हैं। कोई बात नहीं है, मैं इस पर शर्मिंदा नहीं हूँ, लेकिन मैंने ये देखा है कि दीन का काम तन्हा नहीं होता। कल रात हम एक ट्रिप से आए हैं ना वापस, जो साथी थे उनको पता ही है। यकीन करें, उसके बाद मैं ये क्रेडिट दूंगी सब ब्रदर्स को जिन्होंने अपनी फैमिलीज़ को इस सफ़र में इतना सफ़र कराया, इतनी ड्राइविंग, इतना सब्र। मैं कहती हूँ हम सिस्टर से ज़्यादा हमारे घर वालों का सब्र है। हम तो चलें गाड़ी में बैठे तो सो रहे हैं, लेट रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं लेमोजिन माशाल्लाह। हाँ, वो बेचारे पीछे देख सकते हैं, हम बातें करें, सो जाएं, उठे बैठे, वो तो अब ड्राइविंग सीट पे बैठे हैं। खैर, निकले वहाँ से, दर्स वाली जगह पे पहुँचे, 2-3 घंटे कहाँ गए हमें पता ही नहीं। हम फ्रेश अप भी होते, फिर हम वहाँ से खाते पीते भी, फिर हम दर्स वाली जगह पे पहुँचे। इट्स लाइक फन फॉर अस। हम 3-4 घंटे वेल कहना चाहिए कि आप सर्व्ड होते हैं। मैंने कई लोगों को देखा है कि उनके घर वाले उस वक्त भी साथ मस्जिदों में खड़े रहते थे, वो घरों में भी नहीं जाते थे जहाँ दर्स होता था। इवन दे हैव द अपॉर्चुनिटी बट दे डोंट वॉन्ट टू यूज़ इट। गाड़ी में वो ड्राइव कर रहे हैं जहाँ आप इंजॉय कर रही हैं, वो आप खा रहे हैं लश पुश तरीके से लंच, उनको पकड़ के प्लेट में बना दें, वो उस पर भी खुश हैं। क्या ये सब्र नहीं है? और क्या इसका अजर नहीं है? यकीन करें कि हमारे हस्बैंड्स का, हमारे ब्रदर्स का अजर हमसे ज़्यादा होगा इंशाल्लाह क़यामत के दिन। वतवासो बिल हक़ी वतवासो सब बिस सब्र। लेकिन अगर किसी को ये एक्सपीरियंस नहीं हुआ तो हो जाएगा, इट टेक्स टाइम। 5 साल का तो मैंने गोल पहले दिया हुआ था, अब मैं सोच रही हूँ इसको 3 साल पे कर दूँ। कम्युनिकेशन बहुत तेज़ हो गया। आज आप चल रही है ना जिस रास्ते पे, 3 साल बाद हस्बैंड आपके पीछे होंगे। अब ये मेरी बात से मान लें कि कम्युनिकेशन इतना बढ़ गया, पहले मैं 5 साल बोलती थी, आपके हस्बैंड, आपके शौहर, बच्चे, घर वाले आपके साथ होंगे इंशाल्लाह, बल्कि आपसे आगे होंगे। कभी आपने शॉपिंग की हो, मियाँ साहब बच्चा पकड़ कर पीछे पीछे फिर रहे हैं, बेगम चलो ना घर, बस अब मैं और नहीं चल सकता, अच्छा, बस एक अच्छी चीज़ देकर आप तड़पे भागे, दे के खो गए उसमें, थोड़ी बहुत याद, अरे मियाँ ने तो कहा था मैं आगे नहीं जाऊँगा, किधर गए? देखेंगे बेचारे फिर बच्चा पकड़ के पास ही खड़े हैं। आपने जन्नत देख ली है, आप इस जन्नत को पाने के लिए चलती जाइए, आपके घर वाले आपके साथ आएंगे, स्टेयरिंग आपके हाथ में है, तो क्या पता चला, माहौल बन जाता है। और एक बात कहूँ, जिनको माहौल मिला है उनका भी अजर है, जिनका नहीं है और वो बनाएंगी इंशाल्लाह उनका अजर से आता है। वो कहते ना, ना घबरा तुम दिए बाद मुखालिफ से औकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। जिसको अल्लाह की मोहब्बत आ जाती है, अल्लाह के रसूल का मुकाम समझ आता है, उसकी ज़िंदगी संवर जाती है। चलिए अब आखिरी स्लाइड को देखिए, ये है इस्लाम ए टू जी, रूट टू फ्रूट। ज़रा सा नीचे गौर कीजिएगा, पहली जड़ें कैसी थी और अब कैसी हैं, इसको माउस के साथ दिखाएं इनको, आप देखिए ये जड़ें देख रहे हैं, और बात गलत है सच पता नहीं, कहते हैं जहाँ तक दरख्त का साया जाता है ना वहाँ तक उसकी जड़ें होती हैं। ये हैं ईमान के बढ़ने के साथ साथ इंसान के दिल में अल्लाह ताला की, उसके रसूल की मोहब्बत और आखरत पर यकीन और मज़बूत होता है। वक्त के साथ आप जैसे दिल ऐसे पकड़ा जाता है, मैं नहीं हिलती, सारी दुनिया छोड़ दूंगी, अल्लाह को नहीं छोड़ूंगी, अल्लाह का हुक्म नहीं छोड़ूंगी, आप रूठें तो रूठें, माने तो माने, आई हैव माई गोल्स। फिर आप देखिए इबादत की सूरत में, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, दुआ, ये तना मोटा हो गया ना इबादत का, ये आपका बेहतर होना चाहिए दिन ब दिन, कुरान पढ़ने से पहले, कुरान पढ़ने के बाद, और इसी तरह अगले कोर्सेज करने से पहले, उसके बाद आपका ईमान बढ़ेगा। उसके बाद देखिए ये जो ब्रांचेज है ना, ये फिर हमारे मामलात हैं, हकूक़ुल इबाद हैं, और ये जो पत्ते हैं ये अख़लाक़ियात हैं, और ये जो फ्रूट्स लगे हैं, मुझे नहीं पता दुनिया का ठीक वो कौन सा दरख्त है जिस पे आम भी लगते हैं, केले भी लगते हैं, सेब भी लगते हैं। ये कल मेरे सामने एक फ्लायर बना रही थी, अभी हमने ह्यूस्टन का एक ट्रिप दिया तो उसमें एक फ्लायर है रूट टू फ्रूट, तो ये लगी हुई थी ना, मैं पीछे देख रही थी बच्चों की तरह खुश हो रही थी, कभी वो दुल्हन को तैयार होता देख कर बंदा खुश होता है, तो मैं इनका फ्लायर, तो मैं सोचूँ कि मैं दिल में सोच रही थी कौन सा फल चूज़ करेंगी। मैंने इसको इशारा भी दिया कि आम बड़ा प्यारा होता है, इसने अपने वो जो समझ गए, अब शर्मिंदा तो नहीं हो रही, इन्होंने वो अपना सॉफ्टवेयर था उसमें से लिखा फ्रूट्स, तो सारे ही आ गए, तो इन्होंने केला लगाया से। आप सच बताइए, सच है कि झूठ है? लगा, मैं नहीं बोली उसे, मैंने कहा मैं बोलती नहीं हूँ, जब कोई काम कर रहा होता तो मैं कहती खूब गलत करो, बाद में बताऊंगी। तो आज सब मैं इनको बता रही हूँ कि एक ही दरख्त पे सेब केले आम अंगूर नहीं लगते। माशाल्लाह, देखिए आंटी जी ने आपकी हिम्मत ले ली। लेकिन इससे हम आपको एक फीलिंग्स ये दे सकते हैं, आप सबके लिए, आप में से कोई कल आम बनेगा, कोई अनार बनेगा, कोई सेब बनेगा, आप सब वाकई फूल हैं। तो आप वो, आप एक दरख्त नहीं, आप एक फ्लावर फ्रूट बास्केट है इंशाल्लाह। हम में से हर एक कुछ ना कुछ बनेगा, ये आप अगले दिनों में सीखेंगे। आप आम है तो आम ही रहेंगे, आप कभी सेब नहीं बन सकती, कोई करवा करेला भी बनेगा, उसका भी फायदा है। ये दीन हमें सिखाता है बी बेनिफिशियल, बंदा है मोमिन, माशर्ती फलाहो बहबूद में अपना हिस्सा डालता है। बिल्डिंग में शीशा भी लगता है, कंक्रीट भी होता है, लोहा भी होता है, कोई ऑर्गेनाइजेशन होती है ना, इस पर इंशाल्लाह हमने करना है बहुत कुछ प्लान। लेकिन आप खुद को पहचानेंगे, मैं शीशा हूँ, नाजुक अंदाम हूँ, तो आपको भी शीशे की जगह पे लगाएंगे। और अगर आप लोहा हैं तो आप बुनियादों में चली जाएंगी, और अगर आप सिर्फ ये खूबसूरत डेकोरेशन पीसीज हैं, कुछ साल बाद बदल भी जाते हैं। हर चीज़ की ज़रूरत होती है दीन को। तो इंशाल्लाह अल्लाह से ये दुआ करेंगे कि अल्लाह हमें ज़ाया ना करना, ईमान के इस दरख्त में हमें सलामत रखना। चलिए ये पूरा हो गया, आखिरी स्लॉट है आपकी ब्रेक से पहले। ये आपको एक हैंड आउट मिला, ठीक इधर खोल लेती हैं, तो वैसे सबके पास है ना ये हैंड आउट, स्टूडेंट्स के पास तो होगा। लास्ट स्लॉट हमारे आज के इस सेशन का, और वो क्या है, एम्बेसडर्स ऑफ इस्लाम डे वन, आपकी ये एक्टिविटी है, ठीक है? जजाकला, आप इसको खोल लीजिए, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करने वाली हूँ। और माजरत के साथ ये सिर्फ स्टूडेंट्स के ही पास होगा, आप लोग भी ले सकते हैं बाद में अगर चाहें तो रिसेप्शन से। आप देखिए कि ये है असल में इस्लाम ए टू ज़ी। हर दिन आपको एक शीट मिलेगी जो उस दिन के सारे सबक का खुलासा होगा। आज जो हमने किया है, नंबर एक सबसे ऊपर क्या है, सब पढ़िए, इस्लाम। नीचे दो तरफ तराजू के दो डंडे हैं, राइट साइड पे क्या है पढ़िए, लेफ्ट साइड पे क्या, वेरी गुड, शाबाश। हकूकुल्ला को डिफाइन करते हैं, हकूकुल्ला की कितनी किस्में, पहली कौन सी है, दूसरी, गुड। अकायद के अंदर क्या आता है, छह चीज, पांच चीजें हैं आपके सामने, पढ़िए। सबसे पहली ईमान बिल्लाह, बोलिए। नेक्स्ट, नहीं मैं बोलूंगी, आप मेरे पीछे दोहराए। सबसे ऊपर इस्लाम, उसके दो हिस्से, हकूकुल्लाह और हकूकुल इबाद। हकूकुल्लाह के फिर दो हिस्से, अकायद और इबादात। इबादात के आगे से फिर पांच हिस्से, मैं बोलूंगी आप मेरे पीछे दोहराएंगे। ईमान बिल्लाह, ईमान बिल कुतुब, ईमान बिर रसुल, ईमान बिल कद्र, ईमान बिल आखिरा, ठीक है? फिर नेक्स्ट है इबादात, दूसरा हक अल्लाह का, नमाज, रोज़ा, हज और ज़कात। इसमें जिहाद और सदका खैरात को भी लाते हैं, लेकिन बेसिक्स चीज़ें यही हैं, इसको हम देखेंगे। सेकंड टाइप से चलिए, दूसरी तरफ क्या था, हुकूकुल इबाद। इसके फिर दो हिस्से हैं, नंबर एक बोलिए, अखलाकियात, बोले। अखलाक होता है कि अख, अरबी में ए, अरबी में ए तो कोई साउंड नहीं है ना, आ ई ऊ बा बी बू, हाँ हम क्या पढ़ते हैं, बे। तो क्या है लफ्ज, अखलाक, अखलाकियात है। दूसरा क्या है, गुड। अखलाकियात के नीचे ये दूसरे तावीज में क्या लिखा हुआ है, अखलाक हसना और अखलाक सैजिया। मामलात के नीचे कितने डब्बे लगे हुए जी, पहला क्या है, दूसरा, पहला असल में अदाब है, आप इसमें कोई 20 किस्म के आदाब पढ़ेंगे इंशाल्लाह, डिफरेंट थिंग्स इस कोर्स में, आदाब है। दूसरा क्या है, हुकूकुल फराइज हैं। तीसरा क्या है, दावत इल्लाह, और चौथा क्या है, मामलात कल्ब। तो ये है फोर फाउंडेशंस ऑफ इस्लाम। हम इसमें इंशाल्लाह कल से हमारी जो इसकी क्लास होगी उसमें पहली स्लाइड को शेयर करेंगे अकायद से, फिर पूरा वीक हमारा गोल अकीदा सीखने का है। उसमें इतना कुछ है कि अभी आप उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते, आपको टू मच नोट करना पड़ेगा। और मैं इसलिए बोलूंगी कि आप नोट ना भी कर सकेंगे पूरी बात तो कम से कम आपके कानों से टकराएगी तो सही, यानी इट विल बी अ वेरी इंटेंसिव कोर्स, और जो सिर्फ बैठ के सुनेंगे उनको तो ऑफकोर्स बहुत ही मज़ा आएगा। फिर इंशाल्लाह सेकंड वीक में इबादात और थर्ड में अखलाकियात मामलात, चारों वीक्स में लेंगे इसको। एक बहुत बड़ा हमारे आगे गोल है, अल्लाह की मदद से इसको हासिल करेंगे, और इन सारे को पढ़कर एंड पे करना कि व्हाट वी वांट टू अचीव आफ्टर दैट। तूती उकुलहा कुल्लाहीन, हमने बेनिफिशियल बनना है। ये सारी बातें पढ़ने के बाद भी अगर आपको अपनी ज़िंदगी में कोई चेंज ना महसूस हुआ तो फ़ायदा नहीं होगा। और इंशाल्लाह इसके अमली एग्जांपल्स हम हर दिन ब्रेक के बाद सहाबा किराम की स्टोरीज़ पे पढ़ेंगे। दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हमारे वर्क में बरकत दे, हेल्थ में और सारी चीज़ों में, और इससे हम सब अपने दिल में इस बात का यकीन भी ले आएंगे कि अल्लाह ने हमें कितना सिस्टमेटिक रिलीजन दिया है। आपको इस चीज़ का एहसास हो रहा है? और ये तावीज़ है, वैसे चाहें तो इसको गले में डाल लें तो सारे काम आसान है, घोल के पानी में डाल लें, पिकाएं, पी पू जाएं, हैं कोई आता गले मिलता, मैं गले मिल लूँ, मुझे भी वो सब आ जाए जो आपको आता है। मैंने कहा ये इतना आसान होता तो फिर मैं भी किसी अपने बड़े उस्तादों को मिलती रहती, ऐसे नहीं होता। याद रखिए कि ये सारे तावीज़ इंशाल्लाह एंड पे जमा, आपके 16 तावीज़ बनेंगे, डेली एक तावीज़ मिलेगा स्टूडेंट्स को, फिर उसको आप पढ़ें, आप इसको सजा के कमरे में लगा दें अपनी अचीवमेंट्स के नाम पे, ये आपकी मर्जी है, लेकिन मैंने जो आपको इसमें से देना है वो समा इताते नहीं है। अल्लाह ताला में सुन के मानने वाला बना दे। तीन लोग शेयर करें कि आज के स्लॉट में जो कुछ सुना अभी तक ये वही था जो आप सोच रहे थे या डिफरेंट था, सब गेस्ट भी इवन, यानी जो भी चाहे आप लोग, तीन लोग पूरे हॉल में से आ जाएं, इधर करीब आ जाएं ताकि हम क्विकली करें, फिर आपको ब्रेक भी दें वरना ब्रेक छोटी हो जाएगी। अतीक आप आइए, क्योंकि शुरू से आप तो इधर ही थी ना, आपने अभी तक जो सुना उसके बाद आप एज अ स्टूडेंट अपने दिल को क्या महसूस करती हैं, और दो लोग आ जाइए और भी कोई, आपने भी, आप भी आ जाइए, आपने तो थोड़ा सुना जी।
उस्ताद मुझे ऐसे महसूस हो रहा है कि अभी बहुत कुछ बाकी है, बहुत कुछ बाकी है, इतना पढ़ने के बाद भी ऐसे महसूस हो रहा है कि बिल्कुल एम्प्टी है, पूरा वेसल एम्प्टी है। और अल्हम्दुलिल्लाह आज जो चीज़ पढ़ रहे हैं ये दुआ थी जो अल्लाह का बहुत एहसान के कबूल हो रही है। ये ट्री पहला जब मैंने कोर्स किया था, ये ट्री अल्हम्दुलिल्लाह साधन एक्सप्लेन किया था, उसके बाद हमने एक दौरे कुरान किया था जो इस्लाम ए टू जी था, उस टाइम पे भी बहुत ब्यूटीफुल ट्री था, और अब तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत फल लग गए उसको, तो इंशाल्लाह
अल्हम्दुलिल्लाह
और भी ब्यूटीफुल हो जाएगा इंशाल्लाह।
जी
अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह।
सबसे पहले उस्तादा ने तो कहा कि हमने दरिया को कूजे में बंद करना, तो हमने उसमें से एक कतरा आज लिया और उस कतरे से हम आगे अपना दरिया बनाएंगे।
चलो,
और हमें जो कुछ उस्तादा ने बताया है ये हमारी शुरुआत है, और हमने ये मैंने ये सीखा है कि आज की क्लास की जड़ से पहले हमने बीज बोए और हम इस बीज को इंशाल्लाह दरख्त बनाएंगे
इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर,
अच्छा सिखाती
हैं,
इसका बहुत शुक्रिया।
अल्हम्दुलिल्लाह जी, आप आइए, क्या नाम है, लुकमान याद आ रहा है?
आफरीन।
आफरीन, आपने क्या फील किया आज के इतने सेशन से? अभी जो ग्लैमरस पार्ट है वो ब्रेक के बाद है, अभी तो मुश्किल बातें थी ना, आगे स्टोरीज हैं इंशाल्लाह।
जी अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत सारी पॉइंट्स मैंने ली हैं, वही इस्लाम को रिप्रेजेंट करने वाले बनना है इंशाल्लाह। आज हमने अपनी जमीन नरम कर ली,
यानी हमने जज़ाकल्लाह खैर अपने भी दिलों में और अपने इर्द गिर्द वालों के दिलों में ईमान, उसको बंद कर दी, नहीं हाँ ये है सॉरी, दिलों में ईमान का बीज डालना है और तड़पना, एक नई सोच, एक नई जिसे कहते हैं ना मिशनरी जील के साथ उठिए। आज से कल तक आप अपनी जिन दोस्तों को से मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, उनको बोले हम नीचे बैठ जाएंगे, कोई हर्ज तो नहीं आपको, डोंट बी स्टिंजी, हाँ तो हम जगह बना लेंगे, वसत बहुत है जगह में, ये ना सोचिए कि कोई आ गया तो आपकी जगह चली जाएगी, यकीन करें, लेकिन जिसको आप बुला लेंगे उसके साथ आपका एक अकाउंट खुल जाएगा। आप सोचें आप किसके ज़रिए से कुरान के इस कोर्स में आए थे पहले, क्या आप उसका हक दे सकते हैं? नहीं दे सकते। जो बंदा, जो फ्रेंड, जो दोस्त साथी, जो हमारे कुरान की तरफ जाने का जरिया बनते हैं ना, हमें वो भी उतने ही प्यारे हो जाते हैं जितना हमें कुरान प्यारा होता है. और दिस इज़ द बेस्ट फ्रेंडशिप. तो जज़ाकल्लाह खैर आपके सब्र का, सुनने का. आप 12:13 है इंशाल्लाह, मैं सही बोल दूं या आपने अपनी मर्ज़ी से करना है, ये भी सीखना है हमने यहाँ. देखिए 13 में 2 मिनट एक्स्ट्रा करके 12:30 17 मिनट में वापस कौन कौन बच्चा वापस आ सकता है. गो हेड जाइए, इंशाल्लाह 12:30 पे वापस मिलते हैं. सब निकल जाएं 10 सेकंड में, ये हॉल खाली कर दें. और उधर जब लब्बाई की आवाज़ आएगी तो आप सारे इधर मौजूद होंगे. अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.